God identifying himself by his characteristics. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Friday evening, March 20, 1964, Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. खुदा अपनी शनाख्त अपनी खुसूसियात से करवाता है। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानिब से जुमे की शाम 20 मार्च 1964 डेनहम स्प्रिंग्स हाई स्कूल इन डेनहम स्प्रिंग्स लुइजियाना यूएसए में दिया गया।
I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bose there, and I turned around and took a little bit of time to shake his hand.
मैं यहाँ अपने दोस्त जोसेफ बोस को देखकर एक तरह से हैरान हो गया था और मैं घूमा और उसे हाथ मिलाने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला।
Let us turn now in the Word of God to Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse for to draw a text for the night.
आए अब खुदा के कलाम में अब्रानियों पहले बाब की जानिब बढ़ते हैं। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी आयत, ताकि आज रात के लिए एक मजमून लूं।
God who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds.
अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए।
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had sat down on the right hand of the majesty on high.
वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है और वो गुनाहों को दोकर आल में बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा।
Let us bow our heads now for prayer. And now in his divine presence, if you have any request that you'd like to be made known to him, would you just raise up your hand and that's your request that God will.
आए अब हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और अब उसकी इलाही हजूरी में अगर आपके पास कोई दरखास्त है जो आप चाहते हैं कि उसके हजूर पेश की जाए, तो सिर्फ अपने हाथों को ऊपर उठा लें और जो भी आपकी दरखास्त है खुदा उसे ले लेगा।
Our heavenly Father, we are coming now up before thy throne by faith in the name of Jesus Christ thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in his name, it'll be granted.
हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे खुदावन यीशु के नाम पर ईमान रखने के बाइस अब तेरे तख्त के सामने आ रहे हैं और हमें ये जमानत दी गई है कि अगर हम तेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो वो हमें मिल जाएगा।
And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So, Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven.
और तू हमारी तमन्नाओं और जरूरतों को जानता है और तूने ये वादा किया है कि तू हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। लिहाजा ए बाप, हम वैसे ही दुआ करेंगे जैसे तूने हमें सिखाया है। तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
That our request tonight might be according to your desire to give it and grant to us these privileges.
और यही हमारी दरखास्त है और आज रात इसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होने दे और हमें ये शर्फ बख्श दे।
Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers, and may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight. Among us, for we asked it in his name. Amen. You be seated.
ए खुदावंद, आज रात हमारे दरमियान कलाम को और तमाम मुनादों को और सुनने वालों को मसा कर दे और होने दे कि रूहुल कुछ अंदर आए और कलाम को बयान करे। हम ये उसके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ रखें।
Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast.
आने वाली सुबह में मेरा ख्याल है कि फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वालों का ब्रेकफास्ट है। अक्सर उनके यहाँ एक अजलास होता है और मुझे उनके ब्रेकफास्ट के मौके पर बोलने का शर्फ हासिल हुआ है।
This time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group that I belong to. Is a Christian businessman, and now I just speak for him internationally.
और इस वक्त वाहिद यही एक अदारा है जो एक तंजीम नहीं है बल्कि यही वाहिद ग्रुप है जिससे मैं तलक रखता हूँ जो कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन है और अब मैं इनके लिए बैनल क्वामी सतह पर बोलता हूँ.
Now tonight we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you a tired, a worn out throat and received a little. Bronchial from I come from Tucson where it's really good and dry and I come here and it's really good and wet. So there's quite a contrast.
अब आज रात हम भरोसा कर रहे हैं कि ये रफाकत बेफायदा नहीं होगी. मैं आपके पास थकी हुई हालत और खराब गले की सूरत में आया हूँ और ऐसी सूरतयाल थोड़ी सी हलक की नाली की बदौलत हुई है. मैं ट्यूसान से आया हूँ जहाँ वाकई मौसम अच्छा और खुश्क था और मैं यहाँ आया हूँ और ये यहाँ वाकई ही अच्छा और नम है, लिहाजा ये उसके बरक्स है.
If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course.
अगर आप सबको यहाँ काफी पानी मिल गया है तो आप इसे हमारे पास भेज दें, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन बिला शुबा आप ऐसा नहीं कर सकते.
But I'll tell you one thing, it's a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry.
लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि एक मिसाल देता हूँ. देखें, हमारी तमाम चीजें जो एरिजोना में हैं, हमारे दरख्त तमाम कांटेदार हैं. हर एक चीज कांटेदार है. ऐसा इसलिए है कि वो एक खुश्क मकाम है.
Now if that same bush growed over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's reason it becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too, sticking and punching at everything.
अब अगर बिल्कुल वही दरख्त यहाँ बढ़े तो वो अच्छे खूबसूरत पत्तों से भरा हुआ होगा. देखें, क्योंकि वो वहाँ बगैर पानी के है और यही वजह है कि वो एक कांटेदार दरख्त की मानित बन जाता है. और जब कलीसिया जिंदगी के पानी के बगैर बढ़ रही होती है तो फिर ये भी खुश्क और कांटेदार होती है, और जब ये कांटेदार होती है तो फिर ये हर एक चीज को चुभती है.
But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow and sweet, holy and acceptable unto God.
लेकिन जहाँ जिंदगी का पानी होता है वहाँ नरम मुलायम पत्तियाँ निकलती हैं और कलीसिया को खूबसूरत और पाक बनाती हैं, ताकि ये खुदा के नजदीक काबिले कबूल हो सके.
So may the Lord God water us tonight. That we won't be stickers, but we'll be fine leaves that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls.
बस आज रात खुदावन खुदा हमें पानी दे ताकि हम कांटेदार दरख्त ना बने बल्कि हम खूबसूरत पत्तों की मानित बने, ताकि गुमराह लोग हमारे इस दरख्त के साए तले बैठ सकें और अपनी जानों के लिए आराम हासिल कर सकें.
Now, I want to take the text tonight. If the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of the lack of voice.
अब मैं आवाज कम होने की वजह से इस माइक्रोफोन को खींचकर अपने करीब कर रहा हूँ जितना कि मैं कर सकता हूँ, और खुदावंत की मर्जी से आज रात मैं जो मजमून लेना चाहता हूँ.
I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying Himself by His characteristics. May I repeat that again because I know these acoustics is bad here. God identifies Himself by His characteristics.
वो मैं अब्रानियों 1:1 की तलावत से लेना चाहता हूँ, और मैं इसमें से जो मजमून लेना चाहता हूँ वो है, खुदा अपनी शनाख्त अपनी खसूसियात से करवाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आवाज यहाँ मुनासिब नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको दोबारा दोहराता हूँ। खुदा अपनी शनाख्त अपनी खसूसियात से करवाता है।
Now, most anything is identified by its characteristics. Now, I have a few scriptures here that and note that I would like to refer to.
अब देखें, ज्यादातर किसी भी चीज की शनाख्त उसकी खसूसियात से होती है, और मेरे पास यहाँ कुछ हवाले मौजूद हैं जो मैं दूंगा, और कुछ नोट्स हैं जो कि मैं देना पसंद करूंगा।
Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together of one species to another, the characteristic of that flower will identify what flower it is.
अब देखें, किसी भी चीज की खसूसियत उसकी शनाख्त होती है कि वो क्या है। अब देखें, तमाम फितरत में ये बात है, फूल अपनी खसूसियात की बदौलत पहचाने जाते हैं। अगरचे एक किस्म दूसरी किस्म के बिल्कुल करीब तर होती है, तो भी उस फूल की खसूसियत उसकी शनाख्त करती है कि वो कौन सा फूल है।
And in wildlife, many times, I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived.
और कई बार जंगली हयात में, जैसा कि मैं एक शिकारी हूँ, और आपको उस जानवर की खसूसियत के मुतालिक जानना होता है जिसका आप शिकार करने जा रहे होते हैं, या कभी कभी आपको यकीनन धोखा भी हो सकता है।
For instance, like the stone sheep, way up in British Columbia, I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me, and we were hunting.
मिसाल के तौर पर, जैसे कि स्टोन बेड ब्रिटिश कोलंबिया में होती है, मैं इस गुज़िश्ता मौसम खजा में यूकोन में था। अब दो भाई यहाँ मौजूद हैं जो मेरे साथ वहाँ थे, और हम शिकार कर रहे थे।
Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter, because they make the same kind of tracks. They bound when they run away.
अब अगर आपको फर्क मालूम नहीं है और आप एक भेड़ या हरन का पीछा कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आप एक चलाक शिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो छलांग लगाकर भागते हैं तो वो एक ही किस्म के निशान छोड़ते हैं।
And then you see one standing in the distance with his head hid. Well, you would hardly know the difference. They're about the same size across the rump part. It's white, just like the deer. It'd be very hard to tell them. But his horns identifies his characteristic by them horns.
और फिर आप फासले पर एक को सर छुपाए खड़े देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप उनमें फर्क मालूम ना कर सकें, क्योंकि उनका पिछला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा होता है, और वो हिरन की तरह सफेद होता है। इससे उनके मुतल्लिक बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके सींगों के जरिए, यानी उसके सींगों से उसकी खसूसियत जाहिर होती है।
The sheep has a horn, it rounds, and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed.
भेड़ के सींग गोल होते हैं, और एक हरन के सींग कांटे की तरह बाहर को निकले होते हैं। एक बात और है, हरन चारा खाने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते।
And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep that you'd have to know the difference in them when you were up high, because they both dwell high in the mountain. You have to know the difference.
और फिर इसी तरह बकरी चलती है, लेकिन एक बकरी में और एक भेड़ में भी खसूसियत होती है। लिहाजा जब आप बुलंदी पर होते हैं, तो आपको उन दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पहाड़ की बुलंदी पर होते हैं, इसलिए आपको फर्क मालूम होना चाहिए।
But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track.
लेकिन अगर आप तवज्जो दें, तो एक बकरी ऐसे चलती है जैसे खुद को ठोकर मार रही हो, और भेड़ जब किसी मकाम पर चलती है तो वो इस तरह अपने पाँव को नीचे करके बैठती है। इस तरह की खसूसियत से वो अपने पाँव के निशान बनाती है।
You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic.
आप अपने शिकार की शिनाख्त इस खसूसियत की बदौलत करते हैं कि वो क्या करता है, उसका अमल कैसा है, और वो क्या खाता है, और वगैरह वगैरह। ये खसूसियत ही हैं जिनसे शिनाख्त की जा सकती है।
And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go, you can tell by that characteristic of different animal.
और फिर जब उनमें से एक छलांग लगाकर भागती है तो आप देख लेते हैं और उसके पांव के निशान से पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि वो कौन है। यूं आप खसूसियत की बदौलत मुख्तलिफ जानवरों के मुतल्लिक बता सकते हैं।
Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, thicker is the right name for them, and a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer.
फिर आपने कभी ध्यान दिया है? मैं नहीं जानता कि आया वो परिंदे आपके यहाँ होते हैं या नहीं, जिसे जर्द रंग का परिंदा भी कहा जाता है और जे बर्ड भी कहा जाता है। खैर, उनके लिए ठीक नाम फेलकर है और जे बर्ड भी एक जर्द रंग के परिंदे के साइज का होता है।
And you see the two flying, they're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer.
और अगर आप दोनों को उड़ते देखें तो वो तकरीबन दोनों एक जैसे परिंदे होते हैं, और अगर आप इनको देखें और रंग को ना देखें तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा जर्द रंग का परिंदा है?
The jaybird flies more or less in a bee line, but the yellowhammer flapping his wings, as he flaps his wings, he goes down and then up.
जयबर्ड दो मकामात के दरमियान सीधा कम या ज्यादा प्रवास करता है, लेकिन जर्द रंग का परिंदा अपने परों को मोड़ता है। जैसे ही वो अपने परों को फड़फड़ाता है तो वो नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है, नीचे जाता और फिर ऊपर आता है।
He makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies.
देखें, वो अपने आप को इस तरह से लेकर चलता है, और आप जर्द परिंदे की खसूसियात की बदौलत बता सकते हैं कि वो किस तरह से उड़ते हैं।
If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp where a quail might be in a knife, you hunters know that.
अगर आप ध्यान दें कि जब बटेर बाहर आता है तो वो किस तरह से ऊपर आता है, और फिर अगर आप एक दलदली जगह में होते हैं तो फिर आप देखते हैं जहां बटेर होते हैं, और वहां फिर आप गोली चलाते हैं। आप शिकारी लोग ये जानते हैं।
The Wilson snipe and the Jack snipe, they identify themselves by the way they come out, the way they go. They identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are.
Wilson snipe और जैक स्नाइप परिंदे, उन्हें उनके उस तरीके से शनाख्त किया जाता है जिस तरीके से वो बाहर आते हैं और जिस तरीके से वो जाते हैं।
Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying.
इसलिए अगर आपने उनको बोलते सुना है तो आप बता सकते हैं कि वो क्या था, और फिर जिस तरीके से वो जाता है उसके उड़ने की खसूसियात की बदौलत आप बता सकते हैं कि वो क्या है।
Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man.
जैसे एक मर्द और औरत है, वो दोनों इंसान हैं, लेकिन एक मर्द की निस्बत एक औरत मुख्तलिफ खसूसियात रखती है।
I was reading here some time ago about Solomon and the Queen. I've never got around to preaching in my little message here to you on the Queen of the South, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment.
थोड़ा ही अरसा हुआ है कि मैं यहाँ सुलेमान और मलका के बारे में पढ़ रहा था। मैंने यहाँ अपने इस छोटे से पैगाम दक्खन की मलका पर मुनादी अभी तक नहीं की है, जो सुलेमान को देखने और उसकी परखने वाली नेमत को देखने आई थी।
I was reading about that year not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman, or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today.
ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैं यहाँ इस बात के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, बल्कि एक पहेली सुलेमान के सामने रखी गई कि उस मलका ने एक औरत को, बल्कि औरतों को लिया और उन्हें मर्द जैसा लिबास पहनाया। अब देखें, ये बात उस जमाने में अजनबी थी, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर आज की ताजा तरीन तारीख है।
And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true.
और आप जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक औरत के लिए जो मर्द का लबास पहनती है मकरू बात है, और ये बात ला तब्दील खुदा ने कही है, और लिहाजा यही सच है।
So, we find out that Solomon no more than watched him, he had him to walk or do something, and immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man.
बस हम इस बात को जानते हैं कि सुलेमान के अलावा उन्हें और कोई पहचान ना पाया था। उसने उन्हें चलते या कुछ और करते देखा और फौरन कहा, ये औरतें हैं, देखें। उसने औरत की खसूसियात की बदौलत ये बात बताई, क्योंकि वो ऐसा तरीका था जिसको उस औरत ने अपनाया हुआ था कि वो औरत है, मर्द नहीं।
And then, most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves, you can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves, the way they reach out, always with that left hand or the right hand.
और फिर हर एक चीज इस तरीके से है, यानी अपनी खसूसियात से पहचानी जाती है। बिल्कुल जिस तरह बहुत सारे लोग दाएं हाथ या बाएं हाथ की खसूसियत की वजह से पहचाने जाते हैं, वो इस तरह की खसूसियात के हामिल होते हैं जो उनके अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि इस तरह से वो अमल करते हैं। और आप बता सकते हैं आया ये दाएं या बाएं हाथ वाला शख्स है, फक्त उस तरीके से जिससे वो हमेशा इस दाएं हाथ या फिर बाएं हाथ से काम करते हैं।
And remember, Jesus had something like that, that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, five fingers, small index and so forth, just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly.
और याद रखें कि यीशु के पास भी इस तरह की चीज थी, और तकरीबन दो हाथ ही होते हैं, और ये एक जैसे होते हैं, पांच उंगलियां होती हैं, इनमें अंगूठे के निशान और उंगलियों के निशान पाए जाते हैं, छोटी शहादत की उंगली और वगैरह वगैरह। बिल्कुल जैसे दाहिना हाथ होता है वैसे ही बिल्कुल बाएं हाथ की उंगलियां होती हैं, और अमूमन हाथ का साइज भी बिल्कुल एक जैसा होता है।
And the only difference there is in them is one is left and the other is right.
Yes.
That's the only difference you can tell. One is left, other is right.
और इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इनमें से बायां और दूसरा दायां होता है। सिर्फ यही फर्क होता है जो आप बता सकते हैं, एक दायां और दूसरा बायां होता है।
So then in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24 that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days. So close that would deceive the very elected if it was possible.
बस फिर इसमें ये बात है, जैसा यीशु ने कहा, मैं यहाँ एक छोटा सा नुक्ता छोड़ सकता हूँ। यीशु ने मत्ती 24 में कहा कि आखिरी दिनों में रूह की खसूसियात इस कदर एक जैसी होंगी, यानी इतनी मिलती जुलती होंगी कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें।
See, that just you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other is right.
देखें, वो ऐसा करेंगी। आप जरा अपना हाथ लें और उसे ऊपर करें। देखें, अगर आप तवज्जो नहीं देते तो हर लिहाज से ये दूसरे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन हाथों में एक दायां है और दूसरा बायां है।
That's why the spirits are in the last day, they're somewhat alike, but they have a characteristic that identifies them. One is right and the other is wrong, and it can be identified by its characteristic.
और इसी तरह आखिरी जमाने में रूहें हैं, इस कदर एक जैसी हैं, लेकिन आप उनकी खसूसियत से उनकी शिनाख्त कर सकते हैं। समझे, एक ठीक है और दूसरी गलत है, और उसकी शिनाख्त फक्त उसकी खसूसियत की बदौलत ही हो सकती है।
The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the Church. There's a church spirit and a Spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all.
खुदा की रूह की शिनाख्त उसकी खसूसियत की बदौलत होती है, समझे। खुदा की रूह है और कलीसिया की भी रूह है। देखें, कलीसिया की रूह है लेकिन किसी भी तरह खुदा की रूह बिल्कुल कलीसिया की रूह की तरह नहीं है।
There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into you, you walk in there, you find a different spirit.
और फिर एक तंजीमी रूह भी है और इसी तरह एक कौमी रूह भी है, यानी कौम की रूह, क्योंकि मैं इनमें से हर एक कौम में जाता हूँ और जब आप इनमें चलते फिरते हैं तो आप इनमें एक मुख्तलिफ रूप पाते हैं।
I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit.
मैं फिनलैंड में गया हूँ, वो बेहतरीन लोग हैं, लेकिन वहाँ एक फिनिश रूप पाई जाती है। मैं जर्मनी में गया हूँ, वहाँ जर्मन रूप पाई जाती है।
You're not long ago, I was going with the wife when we still lived in Indiana a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home, we had to go get some food.
कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा बल्कि चंद बरस हुए हैं जब हम इंडियाना में रहते थे और मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी सुपरमार्केट में गया था और बस मैं घर आ गया क्योंकि हम कुछ खाने पीने का सामान लेने गए थे।
The rest of them was wearing clothing not becoming to the woman.
और वहाँ उस सड़क पर जहाँ मैं था, हम वहाँ मौजूद थे और ये गर्मियों के दिन थे। हो सकता है कि आप इस बात का यकीन ना करें, लेकिन वहाँ हमने एक औरत को ऐसा लबास पहने हुए देखा और वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं बल्कि उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, वहाँ देखो उस औरत ने कैसा लबास पहना हुआ है जो कितनी अजीब लग रही है, और बाकियों ने भी ऐसे ही लबास पहने हुए थे जैसे थे ही नहीं, वो औरत लग ही नहीं रही थी।
well, that's just the American spirit, the spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. Might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic.
और उसने कहा, बल्कि मैंने कहा, ठीक ये अमरीकी रूह है, देखा ये अमरीका की रूह है, अब देखें अमरीका की भी एक रूह है, इसे तो एक मसीह कौम होना चाहिए, लेकिन इस कौम की रूह मसीह नहीं है। हो सकता है कि एक मसीह कौम कहलाती हो, लेकिन खसूसियत में ये मसीहत से लाखों मील दूर है।
So, this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no, we live here. This is our country. We stay in it. We love it. It's the best nation in the world. But yet, we are not Americans.
बस वो औरत, मैंने कहा, बल्कि मेरी बीवी ने पूछा, अच्छा, क्या हम अमरीकी नहीं हैं? मैंने कहा नहीं, हम यहाँ रहते जरूर हैं, ये हमारा मुल्क है, क्योंकि हम यहाँ ठहरे हुए हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये दुनिया में बेहतरीन कौम है, लेकिन तो भी हम अमरीकी नहीं हैं।
I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. It's not of this world.
मैंने कहा, हम आसमान से पैदा हुए हैं क्योंकि रुलकुस नीचे आया है और हम उसकी बादशाहत से ताल्लुक रखते हैं, और वो बादशाही इस दुनिया की नहीं है।
I said, that's the reason that our sisters wear dresses, wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord from above.
मैंने कहा, यही सबब है कि हमारी बहनें पूरा लबास पहनती हैं और लंबे बाल रखती हैं और हार सिंगार नहीं करती हैं। देखें, उनकी खसूसियात उनकी शनाख्त करती हैं कि वो खुदावंद के लिए पाक हैं और आलमे बाला से हैं।
Therefore, we are seeking a kingdom. We are seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above in glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God. They are properly identified.
इसलिए हम एक बादशाही की तलाश में हैं और हम एक बादशाह के मुंतजिर हैं जो आए और अपनी बादशाही के लिए अपनी रया को ले, और ये अपनी खसूसियात की बदौलत शनाख्त होते हैं, और इनके खजाने इस जमीन के या इस कौम के नहीं हैं, बल्कि ये जलाल की हालत में आलम बाला से हैं, इसलिए ये उस शहर के मुतलाशी हैं जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है, ये मुकम्मल तौर पर शनाख्त शुदा है।
Wish I had enough voice to preach to you some night, but get off of that.
काश मेरे पास इस बात पर मुनादी करने के लिए काफी सदा होती और मैं कुछ रातें आपसे बोलता, लेकिन अब मैं जरा आगे चलता हूँ।
Now, identifying by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land, and God had called them according to His promise.
अब देखें, खसूसियात की बदौलत उसकी शनाख्त होती है। हम इसराइल के जमाने में जब वो वादे की सरजमीन की तरफ आ रहे थे एक अच्छी मिसाल पाते हैं। खुदा ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें बुलाया था।
He told Abraham that he would, his seed would be in this strange nation for 400 years, and then he would deliver him with a great mighty hand. And they go to a land that was promised, was flowing with milk and honey.
खुदा ने इब्राहिम को बताया था कि उसकी नस्ल इब्राहिम की नस्ल उस अजनबी कौम में 400 साल तक रहेगी और फिर वो उसे जोरे बाजू से निकाल ले जाएगा, और तब ये वादा किया गया कि वो उस मुल्क में जाएंगे जहां दूध और शहद बहता है।
And then when the time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them.
और फिर जब वादे का वक्त करीब आया तो वहां एक ऐसा फराउन उठ खड़ा हुआ जो यूसुफ की उस अजीम खिदमत को नहीं जानता था जो उसने उनके दरमियान की थी।
And this God raised up a prophet named Moses. And the man was taught in all the wisdom of the Egyptians. No doubt but what he was a great smart intellectual man. For he could teach the Egyptians wisdom.
और उस खुदा ने एक नबी बनाम मूसा उठा खड़ा किया, एक ऐसा इंसान जिसे मिस्रियों के तमाम आलूम की तालीम दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अजीम इंसान, जहीन और दानिश्वर आदमी था, क्योंकि वो मिस्री आलूम सीखा हुआ था।
Look like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference.
और ऐसे लगता था कि वो रहाई के लिए मुकम्मल फिट आदमी था, लेकिन आप देखें, जिसे हम रहाई देना कहते हैं और जिसे खुदा मखलसी देना कहता है, उसमें फर्क है।
Now watch this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his bachelor of art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure.
अब उस आदमी को उसकी तमाम इखलाकियात के साथ देखते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो बनी इसराइल को मखलसी देने के लिए पैदा हुआ है, तो भी अपनी सारी तालीम के साथ वो सब कुछ जो वो जानता था और इस बात को जानते हुए कि खुदा ने उसे ये काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था। उसके पास आर्ट ऑफ बैचलर और उसकी PhD और LLD और वगैरह वगैरह था, और जब वो इसराइल को मखलसी देने के लिए गया तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया।
Now notice, looked like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he became Pharaoh because he was next in line for the throne.
अब तवज्जो दें और देखें, फराउन बनकर उसके पांव तख्त के ऊपर होने थे, और फराउन बनने के बाद वो बनी इसराइल को मखलसी दे सकता था, क्योंकि वो तख्त नशीन होने के लिए उस लाइन में अगला आदमी था।
But you see, that in doing it that way wouldn't identify God's characteristic in delivering his people. He said he would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand.
लेकिन आप देखें कि अगर वो इस तरह से अपने लोगों को मखलसी देता تو پھر خدا کی خصوصیات کی شناخت نہیں ہونی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا وہ انہیں مخلصی دے گا، وہ انہیں زور بازو سے نکال لے گا، نہ کہ موسیٰ ایک بڑی فوج کے ساتھ مخلصی دے گا، بلکہ خدا زور بازو سے مخلصی دے گا۔
We find that this prophet ran away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him and took God 40 years to drill it out of him.
ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نبی بھاگ گیا اور 40 سال تک بیابان میں رہا۔ فرعون کو موسیٰ میں تعلیم بھرنے کے لیے 40 سال لگے تھے، اور خدا کو اس میں سے تعلیم نکالنے کے لیے 40 سال لگے۔
So we find one day that he on the back side of the desert met the Lord God in a burning bush in a form of a pillar of fire laying in a bush.
پس ہم دیکھتے ہیں ایک دن وہ بیابان کی پچھلی جانب تھا جہاں جلتی ہوئی جاڑی میں خداوند خدا سے اس کی ملاقات ہوئی، جو آگ کے ستون کی صورت میں جاڑی میں موجود تھا۔
And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God?
اور اسے اپنے جوتے اتارنے کے لیے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے۔ اب اس بہترین شخص کو دیکھیں جو مہذب اور تعلیم یافتہ تھا۔ خدا سے ملاقات کرنے کے بعد اس کی خصوصیات کی تبدیلی پر توجہ دیں۔
He done the more, sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking.
خدا اکثر ایسا کرتا ہے۔ بعض اوقات خدا سادہ طریقے سے کام کرتا ہے، اور جسمانی سوچ کے مطابق یہ ایک بے وقوف طریقہ لگتا ہے۔
Notice a man who had been a total failure with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God with all of his education at the age of 40 years old in his prime.
غور کریں، ایک ایسا آدمی جو مکمل طور پر تمام مصری افواج اور سب کچھ جو اس کے گرد تھا، اور اپنی تمام تعلیم کے ساتھ اور اپنی 40 سال کی اعلی عمر میں بھی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔
Here he is 80 years old the next morning with his wife sitting straddle of a mule with a young un on her hip and a stick in his hand going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God because he had a man who would believe his word. That's all.
لیکن ایک صبح وہاں وہ 80 سال کی عمر میں اپنی بیوی کے ساتھ جو اپنی گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے تھی سوار تھا، اور اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑے ہوئے مصر کو جا رہا تھا تاکہ قبضہ کر لے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو مزاحیہ خیز بات ہے، لیکن یہ خدا کی خصوصیات کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ اس کے پاس اب ایک ایسا آدمی تھا جو اس کے کلام پر بھروسہ کرے۔ یہ سچ ہے۔
The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. I am that I am.
بس یہ بات ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک آدمی مصر پر حملہ کرنے جا رہا ہے جہاں ایک فوج بھی ناکام ہو سکتی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ خدا کی خصوصیت تھی، کیونکہ اس بندے کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ خدا کے نام میں جو ہوں سو ہوں میں جا رہا تھا۔
The thing of it was, he took over. He did because he was going in the power of the Lord.
اس کے پاس یہی ایک چیز تھی اور اس نے فتح پائی۔ اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ خداوند کے زور میں جا رہا تھا۔
On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab.
اور جب وہ سفر میں اسرائیل کی وعدے کی سرزمین کی جانب رہنمائی کر رہا تھا، تو اس نے اپنے بھائی تنظیمی بھائی مواب کے ساتھ رابطہ کیا۔ اب دیکھیں، موابی کسی بھی طرح سے بت پرست نہیں تھے، وہ لوط کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور ان بچوں میں سے ایک مواب تھا۔
Now, up there, I want you to notice these two nations in contrast. Here was Egypt, a little scattered about, no nation to go to, no executives or no king or nothing or any dignitaries among them, just the people on their road to a promised land. And here they had to go through the land of Moab. It was right in the line of promise.
अब यहाँ देखें, मैं चाहता हूँ कि आप इन दो कोमों पर तवज्जो दें जो मिलती जुलती हैं। वहाँ मिस्र से एक छोटी सी बिखरी हुई कौम, जो कौम भी नहीं थी, कोई सरबरा या कोई बादशाह या कोई और भी आला शख्सियत उनमें नहीं थी, और ऐसे लोग थे जो वादे की सरजमीन की जानिब अपनी राह पर गामजन थे, और उन्हें वहाँ मोआब की सरजमीन से होकर जाना था, क्योंकि ये इलाका वादे की सरजमीन के रास्ते में था।
And Moab also was a believer in Jehovah, and they had a prophet, and Israel had a prophet. Both of them had prophets.
और मोआब भी यहोवा पर ईमान रखता था, और उनके पास एक नबी था, और इसराइल के पास भी एक नबी था। उन दोनों के पास नबी थे।
And I noticed, they come to the place that the prophet of the organized nation was coming down to curse this other nation because it was just a drifter, not having a certain place to stay. So they come down and watch those two prophets.
और अब तवज्जो दें, वो उस जगह पर आ गए थे जहां मुनज्जम कौम का नबी उस दूसरी कौम पर लानत करने के लिए आ रहा था, क्योंकि वो मुसाफिर थे और उनके पास क्याम करने के लिए कोई जगह ना थी, लिहाजा वो सब आए और उन दो नबियों को देखा।
When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right. Because notice Balaam, the bishop, told him, now you build me seven altars. Seven is the complete number of God, representing the seven church ages, the 7 days of creation, so forth.
और जब वो बुनियादी बात करते थे, तो वो दोनों ही दुरुस्त लगते थे। अब तो जो दें, और बलाम बिशप ने उन्हें कहा, अब तुम मेरे लिए सात मजबे बनाओ, क्योंकि सात खुदा का मुकम्मल अदद है, जो सात कलीसिया जमानों और तखलीक के सात दिनों और वगैरह वगैरह को पेश करता है।
Now notice, seven, God is completed in seven. Seven altars. And on each altar put a bullock. Now that's exactly the same altar they had down in Israel's camp.
अब सात पर तवज्जो दें। खुदा सात में कामिल है। सात मजबे, और हर मजबे पर एक बछड़ा रखा जाए। अब देखें, बिल्कुल ऐसा ही मजबा वहां नीचे इसराइल के खैमा में भी मौजूद था।
There they are down in Israel with the same altar they got up here in the same sacrifice. A bullock and a bullock. A prophet and a prophet. Two nations in contrast. A very perfect example of the day we're living. We had time to go into it.
जैसे मजबे नीचे इसराइल में मौजूद थे, बिल्कुल वैसे ही मजबे ऊपर उनके पास मौजूद थे, और एक जैसी कुर्बानी थी। एक बछड़ा इधर, एक बछड़ा उधर, एक नबी यहाँ और एक नबी वहाँ था, दो कौमें जो आपस में मिलती जुलती थी। अगर हमारे पास वक्त होता तो इसमें जाते, क्योंकि जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये इसकी कामिल मिसाल है।
Notice, God doing this in parable, we would find out, paralleling. Now, also, Balaam required a ram on each altar. That was speaking of his faith in a coming Messiah.
तवज्जो दें, खुदा तमसील में ये बात कर रहा है, और हम तमसील में इस बात को देखेंगे। अब देखें, लिहाजा बलाम को हर मजबे पर एक मेंढा दरकार था। वो आने वाले मसीहा पर अपने ईमान का इजहार कर रहा था।
A ram, he sheep. That's the same sacrifice they had down in Israel. Down in the camp of Israel, up here by Moab. Fundamentally, they were both right. But notice, fundamentally in doctrine.
एक मेंढा और एक बर्रा, बिल्कुल यही कुर्बानी इसराइल में उन लोगों के यहाँ मौजूद थी, नीचे इसराइल के खेमा में, और ऊपर मोआब के मजबा पर एक जैसी चीज मौजूद थी। बुनियादी तौर पर वो दोनों दुरुस्त नजर आ रहे थे, लेकिन तवज्जो दें, बुनियादी तालीम पर वो दुरुस्त लग रहे थे।
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics of God and the Word of God. He stayed with the promise of God for that age because he was in a line going to the promised land.
لیکن ایک نبی جو نیچے اسرائیل کے خیمہ میں موجود تھا وہ خدا کی خصوصیت رکھتا تھا اور خدا کا کلام اس کے پاس تھا اور وہ اس زمانے کے لیے خدا کے وعدے کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ وہ سیدھا وعدے کی سرزمین میں جا رہا تھا سمجھے
Now, as far as the fundamental part, Balaam could be just as identified as Moses was. But you see, Moses, being the correct prophet of God, not only had the fundamental parts, but had the identification of God.
اب بلام کو بھی بلک بنیادی طور پر اسی طرح شناخت کرتا تھا جیسے موسیٰ تھا لیکن آپ غور کریں موسیٰ خدا کا درست نبی ہوتے ہوئے نہ صرف بنیادی حصہ رکھتا تھا بلکہ خدا کی شناخت بھی رکھتا تھا
See, he was in line of duty exactly what was promised for that age. Not for the age of Noah, but for the age then I will take you to a land that's flowing with milk and honey.
دیکھیں وہ اپنے فرض کے راستے پر غامزن تھا جو واقعی اس زمانے کے لیے وعدہ کیا گیا تھا نہ کہ نو کے زمانے کے لیے بلکہ اس وقت کے زمانے کے لیے تھا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ میں تجھے ایسا ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے
They were on their way and Israel was identified with their prophet Moses with the message of that age. God, characteristics identified in Moses.
وہ اپنے راستے پر گامزن تھے اور اسرائیل اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ شناخت ہوا تھا جو اس زمانے کے پیغام کے ساتھ موجود تھا خدا کی خصوصیات موسیٰ میں شناخت ہوئی تھی
A pillar of fire was following him. He also had the atonement in action. Not speaking of it, but had it in action.
Amen.
Not what will be, what is right now.
آگ کا ستون اس کے ساتھ ساتھ تھا اس کے پاس کفارہ عملی طور پر تھا نہ کہ صرف اس کے متعلق بات کر رہا تھا بلکہ وہ عمل میں تھا نہ کہ کیا ہوگا بلکہ ٹھیک اب کیا ہے
Notice, he had a brass serpent that had been lifted up for the sickness and diseases of the people. Therefore, Moses was practicing divine healing.
توجہ دیں اس کے پاس پیتل کا ایک سانپ تھا جو اس نے بیماریوں کے لیے اور لوگوں کے امراض کے لیے بلی پر لٹکایا تھا اس لیے کہ موسیٰ وہاں الہی شفا کی مشق کر رہا تھا
He had the atonement, the brass serpent symbolizing that God was in the camp and the people were looking on that brass serpent and being healed.
اس کے پاس کفارہ تھا پیتل کا سانپ اس بات کی علامت تھی کہ خدا اس خیمہ میں موجود تھا اور لوگ اس پیتل کے سانپ پر نظر کرتے تھے اور شفا پاتے تھے
He also had a smitten rock following him and that was identifying God. To keep the waters of life among them, joy and salvation, that they would not perish but had everlasting life. It was a type of that smitten rock in the wilderness was a type of Christ being smitten.
اور اسی طرح اس کے پاس ایک کوٹی ہوئی چٹان تھی جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی جو خدا کو شناخت کروا رہی تھی کہ ان کے درمیان زندگی کے چشمے خوشی اور نجات کی صورت میں جاری تھے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ان میں جاری تھی اور وہ ہلاک نہیں ہوں گے یہ ایک مثال تھی بیابان میں وہ ماری کوٹی ہوئی چٹان مسیح کی مثال تھی کہ وہ مارا جائے گا
Then they were traveling in the line of promise. That was another identification, the showing God's characteristic. No matter how fundamental this other one was with the word, he had the fundamentalism plus the identification and the characteristic of God among them. God identified himself.
اس وقت وہ وعدے کی راہ پر سفر کر رہے تھے یہ ایک دوسری شناخت تھی جو خدا کی خصوصیات کو ظاہر کر رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ دوسرا شخص کلام کے ساتھ کس قدر بنیاد پرست تھا لیکن موسیٰ کے پاس بنیاد پرستی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شناخت بھی تھی اور خدا کی خصوصیات ان کے درمیان موجود تھی. خدا نے یہاں اپنی شناخت کروائی.
Two prophets, both of them prophets, both of them fundamental. But God identified his characteristics in Moses because he had the characteristics of God with him.
دیکھیں, دو نبی, وہ دونوں ہی نبی تھے, وہ دونوں بنیاد پرست تھے, لیکن خدا نے اپنی خصوصیات موسیٰ کے ساتھ ظاہر کروائیں, کیونکہ موسیٰ کے اندر خدا کی خصوصیات موجود تھی جو خدا نے اس میں رکھی تھی.
Now, again, God's characteristics is always supernatural because he is supernatural. God is supernatural.
اب ایک بار پھر دیکھیں, خدا کی خصوصیات ہمیشہ مافوق الفطرت ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ مافوق الفطرت ہے. خدا مافوق الفطرت ہے.
It's unusual always to the modern trend of thinking of the day. You know that. God's always has upset the apple cart for the religious groups in every age it's ever passed.
ہمیشہ زمانے کی جدید سوچ رکھنے والوں کے لیے یہ غیر معمولی رہا ہے. آپ یہ جانتے ہیں, خدا نے ہر زمانے میں جو گزر گیا ہے مذہبی گروہوں کے نظام کو درم برم کیا ہے.
And not one time did ever a person or a group of people ever organize herself together upon a message but what they died in one of the shelf and never raised again. There's no history.
اور ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص یا لوگوں کا ایک گروہ جنہوں نے خود کو ایک ساتھ پیغام پر منظم کر لیا ہو اور وہ مر گئے ہوں اور پھر دوبارہ کبھی اٹھے ہوں. بس ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں.
The Lutherans, the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and so forth, never raise again. When they go to grouping, God deals with individuals.
Lutheran, Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostal, اور وغیرہ وغیرہ, جب وہ اس گروہ بندی میں چلے گئے تو پھر کبھی دوبارہ نہیں اٹھے. خدا انفرادی طور پر برتاؤ کرتا ہے.
Notice, he's so unusual to the way of thinking. See, we get off in a trend and we have to believe it this way. And then God comes around with his word that he's promised and identifies himself in that word. This group can't go to it because it don't believe in him. See, it's done cut itself off from him.
غور کریں, خدا ہماری سوچ کے طریقے سے بہت ہی بالا تر ہے. دیکھیں, ہمیں اس رجحان سے دور ہونا چاہیے اور اس طریقے سے اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور پھر خدا اپنے کلام کے ساتھ آتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے, اور پھر خود کو اس کلام میں شناخت کرواتا ہے.
Like Joseph, he was a son of David and a good man. Joseph, the husband of Mary, he was a good man and no doubt read the Bible, the scrolls continually because and was looking for a Messiah to come. And should have known what the scripture said that would take place. Isaiah said, a virgin shall conceive.
بالکل یوسف کی طرح, جو مریم کا شوہر تھا, وہ داؤد کا بیٹا تھا اور ایک اچھا انسان تھا اور اچھا آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بائبل پڑھ کر دیکھیں, کیونکہ تومار مسلسل بتاتے ہیں کہ وہ ایک مسیحا کے آنے کا منتظر تھا, اور اسے معلوم تھا کہ کلام نے ایسا کہا ہے جو وقوع پذیر ہوگا, کیونکہ یسعیاہ نے کہا تھا ایک کنواری حاملہ ہوگی.
Well, now he was going with this young girl, Mary, probably 18 years old, is probably a bit older. And then when they were engaged to get married, she shows up to be mother. Now that was kind of hard for Joseph.
ٹھیک ہے, اب دیکھیں, وہ اس نوجوان لڑکی مریم کے ساتھ جا رہا تھا جو کہ غالباً 18 سال کی تھی, اور وہ اس سے تھوڑا بڑا تھا, اور اس وقت جب ان کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ شادی کرنے والے تھے تو مریم پہلے ہی حاملہ پائی گئی. اب اس قسم کی صورتحال میں یوسف کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں کیا طے کرے.
No doubt but what Mary told him the visit of Gabriel, but we notice the way his character was leading him, he doubted it. Now she was found to be mother before they were wed, and in the Bible that पनिशमेंट इज डेथ बाय बीइंग स्टोन्ड।
इसमें कोई शक नहीं कि मरियम ने उसे जब्राइल की मुलाकात के मुतल्लिक बताया होगा, लेकिन हम गौर करते हैं कि किस तरह उसका किरदार उसकी क्यादत कर रहा था, लेकिन वो इस बात पर शक में पड़ गया था। अब इससे पहले कि उनकी शादी होती, वो हामला पाई गई थी, और बाइबल में इसकी सजा संसार करके मौत के हवाले कर देना था।
Unwedded woman becoming mother, she had to be stoned. There's no prostitution in Israel. It was put out. So we find out, and Deuteronomy tells us that.
एक ऐसी औरत जो बगैर शादी के मां बन जाए, उसे संसार किया जाता था। इसराइल में कोई फाशा ना हो, ऐसा लिखा है। लिहाजा हम इस बात को स्तिष्णा में पाते हैं। ये हमें इस बारे में बताती है।
Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done. Because if she was found already to be mother before they were married, then she must be stoned and she must have someone now that could stand as a shield for her. And that looked a whole lot like it was what she was trying to do.
अब हम देखते हैं कि मरियम अपने इन इमाल के लिए जो वो कर चुकी थी, वो यूसुफ को एक डाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए नजर आती है, क्योंकि वो शादी से पहले ही हामला पाई गई थी, इसलिए उसे जरूर ही संसार किया जाना था, और अब उसको एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसके लिए एक डाल की तरह खड़ा हो सके। और अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी।
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, Joseph, Gabriel said to me, the Holy Spirit shall overshadow thee, and this thing that will be conceived in thee is of the Holy Spirit. It's God. It's what it's going to be called, the Son of God.
लेकिन यूसुफ उसकी बड़ी खूबसूरत आंखों में देख रहा होगा, और उसने कहा होगा, यूसुफ, जब्राइल ने मुझसे कहा था, रूहुल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और तू हामला होगी। ये रूहुल कुछ की कुदरत से है, ये खुदा की तरफ से है, इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा।
Joseph, he wanted to believe that, but it was so unusual. That never happened before. And that's just the way today.
और यूसुफ वो इस बात का यकीन करना चाहता था, लेकिन ये वाक्या बहुत ही गैर मामूली था, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज भी बिल्कुल वैसा ही है।
If we could only, if I had some way of getting the people to see that the unusualness of anything, if it's identified by the word, then its characteristics proves what it is. It's God in action.
अगरचे हम कर सकें, काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता कि लोगों को मैं ये गैर मामूली चीज दिखा सकता। अगर वो कलाम की तरफ से शनाख्त शुदा है, तो फिर उसकी खसूसियात साबित करती हैं कि वो क्या है, तो फिर ये खुदा है जो गर्दिश कर रहा है।
Joseph should have known this. He should have known a virgin shall conceive. But he was honest about it. He didn't want to put her away privately, but he was thinking on doing it.
यूसुफ को ये मालूम था, उसको इस बात का पता था, एक कंवारी हामला होगी, और वो इस बात के मुतल्लक दयानदार था। वो उसे चुपके से छोड़ देना नहीं चाहता था, बल्कि वो इन बातों पर सोच ही रहा था।
And then the angel of the Lord appeared to him in a dream. Did you ever wonder why he appeared in a dream? There was no prophets of them days. Their dream was so simple, it needed no interpretation.
और फिर खुदावंत का फरिश्ता ख्वाब में उसको दिखाई दिया। क्या आप कभी हैरान हुए हैं? क्यों फरिश्ता ख्वाब में दिखाई दिया? क्योंकि उन दिनों में नबी नहीं थे। उनके ख्वाब वाज़े थे। उन्हें किसी भी तफसीर की जरूरत नहीं थी।
Said Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Then that settled it.
फरिश्ते ने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। देखें, फिर ये बात तय है।
See, he come to him in a dream, secondarily. But you see, there was no prophet there to identify that word, that this is the virgin that shall conceive. See? So therefore, he appeared to him in a dream because he was honest and just and a good man.
غور کریں, وہ فرشتہ دوبارہ خواب میں اس کے پاس آیا, لیکن آپ غور کریں کہ وہاں نبی نہیں تھے جو اس کلام کی تصدیق کرتے کہ یہی وہ کنواری ہے جو حاملہ ہوگی, سمجھے؟ بس اس لیے فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا تھا کیونکہ وہ دیانتدار اور راست باز اور ایک نیک انسان تھا.
And I believe God will come to any good man in some way and identify his doings to that good man for the age, if that man's called of God for that age.
اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا کسی بھی نیک آدمی کے پاس کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے, اور اگر وہ آدمی اس زمانے کے لیے خدا کی جانب سے بلایا گیا ہے تو اس زمانے کے لیے خدا اپنے کاموں کی شناخت اس نیک آدمی کے ذریعے کروائے گا.
Now, but it was so unusual, they just could not hardly grasp it. But always the appearing according to the promised word for the age. All this unusualness.
اب دیکھیں کہ یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے بھی اس کو سمجھ نہیں سکے, لیکن ہمیشہ یہ انوکھاپن زمانے کے وعدے کے کیے گئے کلام کے مطابق ظاہر ہوتا ہے.
Now there's some people might go around and say, well, this is unusual, that's God. This is unusual. But you see, it has to be identified by the Word, and the Word is God. See?
اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ ارد گرد جائیں اور کہیں, اچھا یہ غیر معمولی ہے کیونکہ یہ خدا ہے اس لیے یہ غیر معمولی ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کو خدا کے کلام سے شناخت ہونا چاہیے اور کلام خدا ہے, سمجھے؟
And then the characteristic of this identification identifies who it is. Of course, God said this would happen, and it happens. See, the characteristic of it is God's word being identified by the characteristic of what's going on.
پھر اس خصوصیت کی شناخت کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کون ہے, کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا ہے, سمجھے؟ یہ خصوصیت خدا کے کلام سے شناخت کی جا رہی ہوتی ہے جو خصوصیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے.
He said in the last days he pour out the Holy Ghost. He did it. The characteristics of it identify that it was God, his word, promise. See, it always identifies itself.
اس نے کہا آخری دنوں میں وہ روح القدس کو نازل کرے گا, اس نے یہ کیا. یہ خصوصیات شناخت کرتی ہیں کہ وہ خدا ہے کیونکہ کلام میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ اپنی شناخت کرتا ہے.
Now, always, every time, corrects the word when the word is said wrong. Did you ever notice? It was in the days of Noah that corrected that scientific age that God was going to bring water down out of the heavens.
اب دیکھیں جب کلام کہہ دیتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کلام ہی درست ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جیسا نو کے دنوں میں ٹھیک اس سائنسی زمانے کو درست کیا گیا جب خدا آسمانوں سے پانی برسانے جا رہا تھا.
It was Moses, see, that corrected when they had all settled down in Egypt and so forth, but God's word had to come to be identified. And the truth of the word corrects the error.
دیکھیں یہ موسیٰ تھا جب وہ مصر میں مقیم تھے اور ان کو درست کیا گیا اور وغیرہ وغیرہ, اس لیے کہ خدا کے کلام کو شناخت کے لیے آنا پڑتا ہے اور کلام کی سچائی نے خرابی کو درست کیا.
Let me ask you something. We may go a little deep here. I'm not supposed to preach teaching or doctrine, but let me just ask you one thing.
میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہاں تھوڑا سا گہرائی میں جا سکیں. اب میں کوئی تعلیم یا نظریہ نہیں سکھا رہا, لیکن مجھے صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے.
Jesus was the Word. We know that. The Bible said it was. St. John, first chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He's still the Word.
یسو کلام تھا. ہم اس سے واقف ہیں. بائبل کہتی ہے کہ وہ تھا. مقدس یوحنا پہلا باب. ابتدا میں کلام تھا, اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا, اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. وہ اب بھی کلام ہے.
Then when he could perceive their thoughts, they ought to know if that was the word, because the word of God said that's what he'd do. He was the prophet.
तब जब वो उनके ख्यालों को जान लेता था तो उन्हें जानना चाहिए था कि वो कलाम है, क्योंकि खुदा के कलाम ने कहा कि वो ऐसा करेगा, वो नबी था।
Now notice, we find out that when he was born, about 12 years of age, he went up to the feast of the tabernacle, and they went up there to the Passover, and on the road back, they went 3 days journey, and they missed him. Perceiving, thinking rather that presuming that he was out among their people.
अब तवज्जो दें, हम इस बात को जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ था और तकरीबन 12 बरस की उम्र का था, तो वो इदे ख्याम में गया। वो वहाँ फसा के लिए गए और अपने वापसी के रास्ते में उन्होंने 3 दिन का सफर तय कर लिया था और उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया था, हालांकि वो समझ रहे थे और सोच रहे थे, बल्कि गुमान कर रहे थे कि वो अपने ही लोगों के दरमियान है।
We can make a lesson out of that. That's so much today. Now you Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, whatever you are. See, you're doing that same thing.
इससे हम ये सबक सीख सकते हैं। ऐसी ही बात आज भी किसी कदर हम में मौजूद है। अब आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, कैथोलिक या आप जो कोई भी हैं, देखें, आप बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं।
You're perceiving because Wesley had a great revival, Luther had a great revival, or Pentecost had a great revival. You're perceiving that he's among the people when sometimes he isn't there.
आप गुमान कर रहे हैं कि वेस्ली के पास अजीम बेदारी थी, लूथर के पास अजीम बेदारी थी, या पेंटिकोस के पास अजीम बेदारी थी। आप गुमान कर रहे हैं कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, जबकि बाज़ औकात वो मौजूद नहीं होता।
They went to find him. Where did they find him? Where they left him? At Jerusalem.
वो उसे तलाश करने गए। उन्होंने उसे कहाँ पाया? यरूशलेम में, जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था।
And when they found him, what was he doing? A little boy, 12 years old, probably never entered school no more what his mother taught him. And here he was in the temple debating with those priests about the word of God. And they were astonished at the wisdom of this child. Why? He was the word.
और जब उन्होंने उसे तलाश कर लिया, तो वो क्या कर रहा था? 12 साल की उम्र का एक छोटा सा लड़का, जो शायद कभी स्कूल भी नहीं गया था, और जो कुछ उसकी माँ ने उसे सिखाया था उससे बढ़कर कुछ नहीं सीखा था, और वहाँ वो हैकल में मौजूद था और उन काहिनों के साथ खुदा के कलाम के मुतल्लिक बातचीत कर रहा था, और वो उस बच्चे की हिकमत से हैरान थे। क्यों? इसलिए कि वो कलाम था।
Now watch, and not dishonoring you Catholic people that call Mary the mother of God, but just let me show you a little error here. If the church is built upon Mary, watch what happened.
अब तवज्जो दें। अब आप कैथोलिक लोगों की तोहिन नहीं है कि आप मरियम को खुदा की माँ कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आप लोगों को छोटी सी गलती दिखाने दें। अगर कलीसिया मरियम पर तमीर हुई है, तो देखें फिर क्या हुआ।
Now she come up and she said, "Oh, your father and I have sought thee with tears." What's that statement? She then condemned her own testimony. She said, "Your father and I have sought you with tears."
अब जब वो वहाँ आई और उसने कहा, "हो, देख तेरा बाप और मैं रोते हुए तुझे ढूंढ रहे थे." इस बयान पर तवज्जो दें। तो फिर उसने खुद अपने ही बयान को रद्द कर दिया। उसने कहा, देख तेरा बाप और मैं रोते हुए तुझे ढूंढ रहे थे।
What's that word? He was the word. He said, "Know ye not that I must be about my father's business?" What's the word? Correct the error.
उस कलाम पर तवज्जो दें। वो कलाम था। उसने कहा, क्या तुमको मालूम ना था मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। ध्यान दे, कलाम गलती को दुरुस्त करता है।
Right there before those priests, she ruined her testimony, said she was conceived by the Holy Ghost, and here she says Joseph is his father.
Yes.
See that word? Catch it right quick.
Amen.
He was the word.
ठीक उन काहिनों के सामने उसने अपनी गवाही को पामाल कर दिया, जबकि कहा गया था कि वो रूह को उसकी कुदरत से हमला पाई गई, और यहाँ उसने कहा यूसुफ उसका बाप है। देखें, उस कलाम ने फौरन इस बात को पकड़ा, वो कलाम था।
Now you know a 12-year-old boy wouldn't do that.
No.
He was the Word.
Amen.
He was the spoken Word of that age. So therefore, the identified characteristic of God was in Christ.
Yes.
He corrected the errors.
अब देखें, आप जानते हैं कि एक 12 साला लड़का ऐसा नहीं कर सकता। वो कलाम था। वो उस जमाने का फरमूदा कलाम था। बस इसलिए मसीह में खुदा की खसूसियात की शनाख्त हुई। उसने गलतियों को दुरुस्त किया।
He said, they said, why, we are Moses' disciples. He said it. You was Moses' disciples, you know me, he wrote of me. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like me. You would know me if you knew Moses.
उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा, क्यों, हम तो मूसा के शागिर्द हैं, समझे? उसने कहा, अगर तुम मूसा के शागिर्द होते, तो तुम मुझे जानते, क्योंकि उसने मेरी बाबित लिखा था. मूसा ने कहा, खुदावन तुम्हारा खुदा मेरी मानिद एक नबी बरपा करेगा. अगर तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते.
And see, the word always corrects the error of the day, but the people don't like to believe it. They hang right on just the same.
और गौर करें, कलाम ने हमेशा जमाने की खराबी को दुरुस्त किया है, लेकिन लोग उस पर ईमान रखना पसंद नहीं करते. लोग ठीक बिल्कुल उसी तरह लटके रहना चाहते हैं.
But Jesus corrected his own mother. And his mother was in the wrong, because she had already said that that was a child conceived in her by the Holy Ghost, and here she turns her testimony around and said that Joseph was her father, was the father of Jesus.
लेकिन यीशु ने ठीक अपनी माँ को दुरुस्त किया, क्योंकि उसकी माँ गलती पर थी, क्योंकि उससे कहा गया था कि ये लड़का रूह कुछ की कुदरत से उसके पेट में है, और यहाँ वो अपनी गवाही से मुंह मोड़ रही थी और कह दिया कि यूसुफ इसका बाप है, यीशु का बाप है.
Now, if Joseph, if he was the son of Joseph, if he had been about his father's business, he'd been down the carpenter shop. Yeah. But he was about his father's business up there in the temple rebuking those organizations.
Amen.
He was about his father's business. Just a 12-year-old lad. Know ye not that I must be about my father's business?
अब अगर वो यूसुफ का बेटा था, तो फिर वो अपने बाप का कारोबार चला रहा होता. वो एक बढ़ई की दुकान में होता, लेकिन वो वहां हैकल में अपने बाप के कारोबार में मसरूफ था और उन तंजीमों को मलामत कर रहा था, समझे? लेकिन वो तो महज अभी 12 वर्ष का लड़का ही था और अपने बाप के कारोबार में मसरूफ था. क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है?
Did you notice when Jesus was tempted by Satan, his characteristic there when he was in his temptation identified him to be God because he stayed with the Word. It is written, said Satan. Jesus said, it's also written. Stayed right with the Word.
क्या आपने गौर किया? जब यीशु अबलीस से अजमाया गया, जब वो अजमाइश में था, तो उसकी खसूसियात वहां मौजूद थी, जिनसे उसके खुदा होने की शनाख्त हुई, क्योंकि वो कलाम के साथ खड़ा था, समझे? जब शैतान ने कहा ये लिखा है, तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है, ठीक कलाम के साथ खड़ा था.
God in sundry times we read here, God in sundry times, that's old times, divers manners, many ways, identified himself to his prophets by visions.
अगले जमाने में खुदा ने, हम यहां पढ़ते हैं, अगले जमाने में खुदा ने पुराने वक्तों में हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरा बहुत सारे तरीकों से, रोयाओं से और अपने नबियों की मार्फत खुद को शनाख्त करवाया.
That was the characteristic of a prophet, was when he foretold things and it happened. Now that was his characteristic of his identification, that God was with him.
ये नबी की खसूसियत थी, वो पहले से बातें बता देता था और वो वकू पजीर होती थी. अब यही उसकी अपनी शनाख्त की खसूसियत थी कि खुदा उसके साथ था.
Then that gave him the rights to interpret the word for that day, because the word of God come to the prophets.
Amen.
The characteristic of the prophet that he foretold.
तभी तो वो उसे उस जमाने के लिए कलाम की तर्जमानी करने के हकूक देता था, क्योंकि खुदा का कलाम नबियों के पास आता है اور نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ پہلے سے بتا دیتا ہے.
The Bible said, if there be one, and what he says comes to pass, then you hear it. But if it doesn't, don't believe him, don't fear him. But my word's not in him. But if it does come to pass, then my word's in him. That's his identification. That's the characteristic of a prophet.
بائبل بیان کرتی ہے اگر تم میں کوئی روحانی ہو اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ پورا ہو تو پھر اس کی سننا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا یقین مت کرنا، اس سے خوف مت کھانا. لیکن میرا کلام اس کے منہ میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ پورا ہوتا ہے تو پھر میرا کلام اس کے منہ میں ہے. یہی اس کی شناخت تھی، یہی ایک نبی کی خصوصیت ہے.
Now, God in sundry times, that's how he showed his characteristics of identification of himself to man by speaking through a man that was called to be a prophet.
اب دیکھیں اگلے زمانے میں خدا نے کیسے اس نے اپنی خصوصیات کی شناخت کو خود ایک آدمی سے ظاہر کیا، یعنی اس آدمی کے بولنے کے وسیلہ سے جو نبی ہوتا تھا.
Now the Bible says that God in sundry times, diverse manners, spoke to the fathers through the prophets.
اب دیکھیں بائبل کہتی ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا.
We also read over in 2 Peter that the whole word of God was wrote by him. Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible.
Amen.
اسی طرح ہم دوسرے پترس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا پورا کلام ان کے وسیلہ سے لکھا گیا. پرانے وقت کے آدمی جو روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے تھے، جن کے وسیلے بائبل لکھی گئی.
They were prophets. The word come to them and they wrote it down under inspiration.
اور وہ نبی تھے، کلام ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے لکھا، اسے روح القدس کی تحریک کے سبب سے لکھا.
First they were identified prophets and they wrote the word of inspiration. And they had the interpretation of the divine revelation because it was God in the man.
پہلے وہ بطور نبی شناخت ہوئے، پھر انہوں نے روح القدس کی تحریک سے لکھا، اور انہوں نے الہی مکاشفہ کی ترجمانی کی، کیونکہ یہ خدا تھا جو آدمی میں موجود تھا.
That's why he showed himself in his characteristics of identification. Their visions being the vindicated was God's characteristic in them making himself known to the people.
اب اس طریقے سے اس نے خود کو اپنی خصوصیات کی شناخت سے ظاہر کیا. ان کی رویائیں تصدیق شدہ ہوتی تھیں کہ خدا کی خصوصیت ان میں تھی جو ان لوگوں میں جاننے کے قابل بناتی تھی.
That's the only way he was in Christ. A prophet was just a little speck. Christ was the fullness of God.
Amen.
And God was in Christ reconciling the world to himself and his characteristics identified him.
Amen.
What he was.
اب دیکھیں صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ مسیح میں تھا. اب نبی تو بس ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، جبکہ مسیح خدا کی پوری معموری تھا، اور خدا مسیح میں تھا جس نے خود دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا تھا، اور اس کی خصوصیات نے اس کی شناخت کی کہ وہ کیا تھا.
In so much that he said, if I do not the works of my father, then don't believe him. If I don't have the character of my father, then don't believe me. Don't believe my claims. If I haven't got the character of my father in me, then don't believe it at all.
یہاں تک کہ اس نے کہا، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو پھر اس کا یقین نہ کرو. اگر مجھ میں میرے باپ کی خصوصیت نہیں ہے تو پھر میرا یقین نہ کرو، اور نہ ہی میرے دعووں کا یقین کرو. اگر مجھ میں میرے باپ کی خصوصیت نہیں ہے تو پھر کسی بھی طرح اس کا یقین نہ کرو.
Now, his characteristics never changes. God cannot change his character no more than a lamb can change its character or any other thing changes its characteristics.
اب دیکھیں اس کی خصوصیات کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں. خدا کبھی بھی اپنی خصوصیات کو تبدیل نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک برا اپنی خصوصیت سے بڑھ کر تبدیلی کر سکتا ہے، یا کوئی اور چیز اپنی خصوصیات کو تبدیل کر سکتی ہے.
Because as long as it's in its original, and if you change anything, then you've changed it from its original.
کیونکہ جب تک وہ چیز اپنی اصلی حالت میں ہے وہ اصل ہے، اور اگر آپ کسی چیز کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اس کی اصلی حالت سے تبدیل کر دیا.
It's just like you can take a hog, and you can wash a hog and put that paint on his toenails like the women does, and fix it up with lipstick, and put it on a nice dress, turn that old sow out, she'd go right straight to the water and water again. Why? She's a hog.
Amen.
That's all.
ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक सूरनी को लेते हैं और आप उस सूरनी को नहलाते हैं और उसके नाखूनों पर रंग लगाते हैं जिस तरह औरतें करती हैं और उसे सुर्खी लगाते हैं और उसे एक बेहतरीन लिबास पहनाते हैं और उस पुरानी सूरनी को बाहर निकालते हैं तो वो ठीक सीधी दलदल में लौटती है वो दोबारा दलदल में लौटती है क्यों क्योंकि वो एक सूरनी है बस ये बात है
But you know, you wouldn't make, a lamb wouldn't do that.
Right.
He won't even get in that mud. He don't want nothing to do with it.
Amen.
It's the characteristics of it, see?
मगर ये तो आप जानते हैं कि आप उसे और कुछ नहीं बना पाएंगे. एक बरा ऐसा नहीं करेगा. वो उस दलदल में जाने की सोच भी नहीं सकता. वो उसके साथ कोई भी तल्लुक रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसकी खसूसियात हैं. समझे?
You might dress him in the same kind of clothes, but he sure won't go. The outside doesn't matter. It's the inside.
आप शायद बिल्कुल उसे उसी किस्म के कपड़े पहना दें, लेकिन वो यकीनन ऐसा नहीं करेगा. वो यकीनन वहाँ नहीं जाएगा. बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो अंदर की बात है.
Now God, being the source of all life, don't fail to get this. If I'm trying all with this in me to get you to see something. See? It's to your good, friends. It's for your behalf.
अब देखें, खुदा तमाम जिंदगियों का मंबा है. इस बात को हासिल करने में नाकाम मत हों. अपनी तमाम सलाहियत के साथ जो मुझ में है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कुछ देखें, समझें. समझे दोस्तों, ये आपकी बेहतरी के लिए है. इसमें आपकी इज्जत है. समझे?
I didn't come here just to be seen. I didn't come here, there was no other place to go. I come here because I felt to come here.
Yeah, precious Lord.
I felt that the ministry the Lord had given me must be showed amongst the people here.
Yeah.
And I'm trying to get you to see what God really is now.
मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि देखा जाऊं. मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैंने यहाँ आने के लिए महसूस किया, और मैंने महसूस किया कि खुदावंद की खिदमत जो उसने मुझे दी है, उसको जरूर ही लोगों के दरमियान जाहिर करूं. और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उसे हासिल करें ताकि देखें कि वाकई खुदा क्या है.
He's his promised word. He always is the word. And he identifies himself by the characteristic that he promised.
वो उसका मौदा कलाम है. वो हमेशा से कलाम है, और उसने खुद को उनकी खसूसियात से शनाख्त किया जिनका उसने वादा किया था.
A certain character would rise in a certain time, that's in the word. Then the characteristic of this person is supposed to rise identifies that is the person.
जैसे फलां फलां खसूसियत फलां फलां वक्त में उठेगी, और ये बात कलाम में मौजूद है. फिर उस आदमी की खसूसियत जो बजाहिर उठता है शनाख्त करती है कि ये वो शख्स है.
That's the reason Jesus had to be who he was. They should have seen it. No wonder they were blind. The thing said, though he had done so many miracles, yet they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see and ears and can't hear.
यही सबब है कि यीशु को वही होना था जो वो था. उन्हें इस चीज को देखना चाहिए था. हैरानगी की बात नहीं है कि वो अंधे थे, क्योंकि ये बात कही गई थी. हालांकि उसने बेशुमार मौजजात किए थे, तो भी वो उसका यकीन ना कर सके, क्योंकि यसाया ने ये बात कही थी, उनकी आंखें हैं मगर देख नहीं सकते, कान हैं मगर सुन नहीं सकते.
Each age, not only his age, but every age, how God in sundry times, divers manners, still they just couldn't get it.
देखें, हर जमाने में, ना सिर्फ उस जमाने में, बल्कि हर जमाने में, कैसे अगले जमाने में खुदा ने हिस्सा बाहिस्सा तरह बतरा ऐसा किया, तो भी वो इस बात को हासिल ना कर सके.
Now, his characteristics never fails. It always is the same. Now remember, his characteristic, the characteristic of God cannot fail.
Amen.
If it does, then God's fail.
अब देखें, उसकी खसूसियात कभी भी नाकाम नहीं होती हैं। वो हमेशा यकसा है। अब याद रखें, उसकी खसूसियत, खुदा की खसूसियत कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर ये नाकाम हो जाती है, तो फिर खुदा नाकाम हो जाता है।
And the Bible said in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, He is the unchangeable God. Whatever character He was at the beginning, He is still that same character.
और बाइबल अब्रानियों 13 में कहती है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, इसलिए वो लातब्दील खुदा है, और जो खसूसियत उसकी इब्तिदा में थी, अब भी उसकी वही खसूसियत है।
Every way he worked, any time he ever done anything, he does it the same way every time. If he doesn't, his character's changed. See? And his characteristics would display something it wasn't of God. See? So we wouldn't know where.
हर तरीके से उसने काम किया। उसने जब भी कोई काम किया, तो उसने उसे हमेशा उसी तरीके से सरंजाम दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो उसकी खसूसियत बदल जाती है। देखें। और फिर उसकी खसूसियत किसी और चीज को जाहिर करेगी जो खुदा की नहीं थी, समझे? लिहाजा हम नहीं जान पाएंगे कि कहां हैं।
Like Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare for battle? If the trumpet gives an uncertain sound,
जैसे पालूस ने कहा, और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा?
Now, if the trumpet is supposed to sound retreat, that's what we got to do, retreat. Yes. If the trumpet sounds charge, that's what we're supposed to do, is charge. Yes.
अब अगर बजाहिर नरसिंगे की आवाज पीछे हटना है, तो फिर हमने यही कुछ, यानी पीछे हटना ही हासिल किया है. और अगर नरसिंगे की आवाज हमला करना है, तो फिर हमें बजाहिर यही कुछ, यानी हमला करना है.
But what is a trumpet? Is the word of God. Amen. It identifies God, whether it's go up, sit down, retreat, stack arms, whatever it is. It's God's trumpet sound.
लेकिन नरसिंगा क्या है? ये खुदा का कलाम है. ये खुदा को जाहिर करता है. चाहे ये कहता है ऊपर उठो, बैठ जाओ, पीछे हटो, असले का ढेर लगा दो, चाहे ये जो कुछ भी कहे, ये खुदा के नरसिंगे की आवाज है.
And an uncertain sound, when the Bible says a certain thing is supposed to happen, somebody says, well, that's another day, then there's an uncertain sound there. Then you don't know what to do.
और जब तुरही की आवाज आती है, तो फिर बाइबल कहती है कि ये किसी काम के लिए है. अगर कोई कहता है, ओ, ये तो बस किसी दूसरे जमाने के लिए था, तो देखें, फिर वहां तुरही की आवाज मौजूद है, लेकिन उस वक्त आप नहीं जानते कि क्या करना है.
Jesus said, I have power to lay my life down and raise it up again. No uncertain sound there.
यीशु ने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार है. क्या यहाँ तुरही की आवाज साफ नहीं है?
The woman said, we know Messiah cometh, and when he cometh, he'll tell us the things like he did. He said, I'm he. No uncertain sound there.
Amen.
I am he.
Amen.
Hallelujah.
औरत ने कहा, हम जानते हैं मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें बिल्कुल ऐसी ही बातें बताएगा जैसी इसने बताई हैं. उसने कहा, मैं वही हूँ. क्या तुरही की आवाज साफ नहीं है? मैं वही हूँ. जी हाँ, आमीन.
They said our fathers eat manna in the wilderness. He said they're everyone dead. He said, but I am the bread of life that come from God out of heaven. No uncertain sound. I'm the tree of life from the Garden of Eden. No uncertain sound about that. Certainly not. Nothing uncertain about it. He was certain in everything that he did.
उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया. उसने कहा, और वह सब मर गए. उसने कहा, मैं हूँ वह जिंदगी की रोटी जो खुदा की तरफ से आसमान से उतरी. क्या तुरही की आवाज साफ नहीं है? और बागे अदन से जिंदगी का दरख्त मैं हूँ. नहीं, क्या इसके मुतालिक तुरही की आवाज नहीं है? यकीनन साफ है. इसके मुतालिक सब कुछ साफ है. जो कुछ उसने किया वो हर एक चीज में वाजे था.
The Bible don't give an uncertain sound. It identifies a characteristic of God in its sounding.
बाइबल कोई मशकूक आवाज नहीं देती, बल्कि ये अपनी आवाज में खुदा की खसूसियत की शिनाख्त करती है.
Jesus said in St. John 10:37, if I do not the works of my Father, and I don't have that character of my Father, then don't believe me. They are the one, they identify His character in me, His characteristics.
यीशु ने मुकद्दस यूहन्ना 10:37 में कहा, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता और अगर मुझ में मेरे बाप की वो खसूसियत नहीं है तो फिर मेरा यकीन ना करो। वो एक हैं और उसने अपनी खसूसियत को बल्कि अपनी खसूसियात को मुझ में शनाख्त किया।
Because the Father is the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the characteristic of God is displayed by His promise for that age.
क्योंकि बाप कलाम है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और खुदा की खसूसियात उसके वादे के जरिया से इस जमाने के लिए जाहिर हुई हैं।
Now if he'd lived in Moses' time, it wouldn't have worked. And if Moses lived in his time, it wouldn't have worked. If he'd lived in Noah's time, it wouldn't work if Noah lived in his time.
अब अगर वो मूसा के वक्त में रह रहा होता तो इससे काम ना चलता और अगर वो मूसा उसके वक्त में रह रहा होता तो इससे भी काम ना बनता और अगर वो नूह के वक्त में रह रहा होता तो इससे भी काम ना बनता या अगर नूह उसके वक्त में रह रहा होता।
Noah was prophesying of things for that day, and his characteristic and what he done identified him with the word of God. Moses did the same thing.
नूह ने उस जमाने के लिए नबुवत की थी और उसकी खसूसियत और जो कुछ उसने किया खुदा के कलाम के साथ उसकी शिनाख्त हुई। मूसा ने भी बिल्कुल यही काम किया।
And here Jesus come, and the word is promised for that age is identified in Jesus Christ by the characteristic of the word which is God.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
और फिर यीशु आया क्योंकि कलाम ने उस जमाने के लिए वादा किया था कि जो के यीशु मसीह में कलाम की खसूसियत की बदौलत शनाख्त हुआ जो के खुदा है। आमीन।
The pouring out of the Holy Ghost in the last days upon the common people has identified God's characteristic with the people. He promised it. It's a word. He said he'd do it.
Amen.
Nobody can take it back. He said he would do it.
और फिर आखिरी दिनों में आम लोगों पर रूल कुछ का नजूल था जो लोगों के साथ खुदा की खसूसियत की शनाख्त है। उसने इसका वादा किया था। ये कलाम है। उसने कहा था वो ऐसा करेगा और कोई भी इसको फेर नहीं सकता। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा।
So all these things that he's promised, that's what he does. It identifies his characteristic. Yes, sir. Don't believe it. Don't believe my claims if my characteristic isn't that of God.
बस वो तमाम बातें जिनका उसने वादा किया था उन्हें वो पूरा करता है क्योंकि ये उसकी खसूसियत की शनाख्त है। जी हाँ जनाब, उसने कहा अगर मेरी खसूसियत वो नहीं है जो खुदा की है तो फिर इसका यकीन ना करो, मेरे दावों का यकीन ना करो।
Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my identification, my characteristic. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. That identifies that the character of Christ is in him, displaying the characteristics of him.
Yes.
Amen.
Amen.
I feel pretty religious right now if I am horse. Yes, sir.
अब यूहन्ना 14:12 पर तवज्जो दें। लिखा है, जो मुझ पर ईमान रखता है उसने कहा वो मेरी शनाख्त और मेरी खसूसियत रखता है। जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। ये चीज शनाख्त करती है कि मसीह की खसूसियत उसमें है जो उसकी खसूसियात को जाहिर कर रही है। आमीन। अगरचे मेरी आवाज बैठी हुई है तो भी अब मैं काफी रूहानीपन महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ जनाब।
Oh my, see, there's no mistake about it. His life, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. See, that identifies the characteristic.
Oh, mere khudaya, isme koi galti nahi hai. Uski zindagi, dekhen, jo mujh par imaan rakhta hai, ye kaam jo main karta hoon, wo bhi karega. Gaur karein, ye khususiyat ki shinaakht hai.
Same thing he said, if my character doesn't identify myself, God in him, then he don't believe him. Now, he also said that he would be identified in that.
बिल्कुल यही बात उसने कही। अगर मेरी खसूसियत मेरी अपनी शनाख्त नहीं करती कि खुदा मुझ में है तो फिर कोई शख्स मेरा यकीन ना करे। अब देखें, इसी तरह उसने कहा था کہ وہ اس میں شناخت ہوگا.
Then that, if it doesn't identify him, then he isn't what he says. And today, if Christ doesn't identify himself, the characteristic of Christ identify us as being of Christ, believing the Word, Jesus was the Word, so he had to believe the Word.
تو پھر اگر وہ اس کی شناخت نہیں کرتا تو پھر وہ نہیں جو وہ کہتا ہے. اور کیا آج مسیح اپنی شناخت نہیں کرواتا؟ مسیح کی خصوصیت مسیح کے ہونے کی وجہ سے ہماری شناخت کرتی ہے. لہذا کلام پر یقین کریں. یسوع کلام تھا، پس اس نے کلام کا یقین کیا.
And how can we say that we are of Christ and deny any word in that Bible? The Holy Spirit of Christ is God in you. And it'll punctuate every promise with an amen.
اور اگر ہم بائبل کے کسی لفظ کا انکار کرتے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں؟ اور اگر مسیح کا پاک روح یعنی خدا آپ میں ہے تو وہ ہر وعدے پر زور دے کر آمین کہے گا.
The Bible said, these signs shall follow them that believe. The Spirit of God said, amen.
کیونکہ جب بائبل کہتی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے تو خدا کا روح کہتا ہے آمین. سمجھے؟
Don't say, no, that is for another age, that's for disciples only. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He, anywhere, all the world that believeth,
amen,
these signs shall follow him.
Yeah.
Same thing, same yesterday, today, and forever. The characteristic being identified.
کیونکہ پھر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، نہیں، یہ کسی اور زمانے کے لیے تھا، یہ صرف رسولوں کے لیے تھا. تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور تمام دنیا میں کہیں بھی وہ جو ایمان لائے وہی کام یعنی معجزات اس میں ہوں گے، اور خصوصیت کی شناخت جاری رکھتے ہوئے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے.
That makes Hebrews 1:1, God of sundry times speaking to the fathers by the prophets, identifying Christ resurrected today by the same characteristic that he did in sundry times. Did you notice? God never changes his way.
یہی بات عبرانیوں 1:1 میں موجود ہے. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا جو آج مسیح کے جی اٹھنے کی شناخت ہے، بالکل اسی خصوصیت کی بدولت جو اس نے اگلے زمانے میں رکھی تھی. کیا آپ نے غور کیا؟ خدا کبھی اپنے طریقوں کو تبدیل نہیں کرتا.
In the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out.
قدیم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک خواب دیکھنے والا ایک خواب دیکھتا تھا، اگر وہاں اس ملک میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا کہ دیکھا جائے کہ وہ خواب درست تھا یا نہیں، تو ان کے پاس اس بات کو تلاش کرنے کا ایک اور طریقہ تھا.
They took that character, ever who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was the high priest, hung on the post.
وہ اس شخص کو لیتے تھے جس نے خواب دیکھا ہوتا تھا اور اسے ہیکل میں لے جاتے تھے، اور وہاں ہارون کا سینہ بند لٹکا ہوا ہوتا تھا جو کہ سردار قائم تھا.
And this dreamer told this dream, no matter how good it sounded, how real it sounded, if there wasn't a supernatural light flashed on those stones, which is called Urim Thummim, Bible readers understand, then I don't care how real it sounded, it wasn't so.
اور وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو بیان کرتا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے یا کتنا اصل لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ مافوق الفطرت روشنی ان پتھروں پر نہیں پڑتی تھی جو کہ اریم تمیم کہلاتے تھے، بائبل پڑھنے والے سمجھ گئے ہیں، تو پھر مجھے پرواہ نہیں کہ وہ خواب کس قدر اصل لگتا تھا، وہ درست نہیں ہوتا تھا.
The unusualness of God, the character of God had to display his characteristics in the supernatural to show that he identified himself on the message. Amen.
پس خدا کا انوکھاپن، خدا کی خصوصیت مفوق الفطرت چیز میں اپنی خصوصیات کو ظاہر کرتی تھی تاکہ دکھا پائے کہ اس نے پیغام پر اپنی شناخت کر دی ہے. آمین.
I say the same thing tonight. The old Urim and Thummim's gone, but the word's still the thing that identifies the characteristic of God. The promise of the hour that we're living. There is God's characteristics identified by the promise of the hour that we're living in.
آج رات میں بالکل وہی بات کہتا ہوں. वो कदीम औरीम और तमीम तो जा चुके हैं, लेकिन कलाम अब भी बिल्कुल वही काम कर रहा है जो खुदा की खसूसियत की शनाख्त करता है, यानी उस वादे की घड़ी की जिसमें हम रह रहे हैं। जिस वादे की घड़ी में हम रह रहे हैं, इसकी बदौलत खुदा की खसूसियत की शनाख्त हो रही है।
That makes God the same as he was in sundry times. Look, in divers manners, he spake to the fathers by the prophets. And the law and prophets were until John, since then the kingdom of heaven.
ये बात खुदा को यकसां बनाती है, जैसा कि वो था। तवज्जो दें, अगले जमाने में हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरा बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम किया, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक़्त से आसमान की बादशाह की खुशखबरी दी जाती है।
Notice, but in this last day, speaking the same thing he did then, through his son Christ Jesus.
ध्यान दें, लेकिन इस आखिरी जमाने में वही बात उसने कही जो उसने उस वक़्त अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत कही।
God in sundry times, divers manners, spake to the fathers through the prophets. In this last day, doing the same thing, speaking to the people, the fathers, through his son, Christ Jesus.
अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम किया, और इस आखिरी जमाना में बिल्कुल वही काम कर रहा है, लोगों से यानी बाप दादा से अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत कलाम कर रहा है।
Has raised him up from the dead, and he lives within us, identifying himself and foretelling us things, and he's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
और उसे मुर्दों में से उठा खड़ा किया है, वो हमारे दरमियान मौजूद है और खुद को शनाख्त करवा रहा है और हमें पहले से होने वाली बातें बता रहा है। वही दिल के ख्यालों और अरादों को परखने वाला है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
God in sundry time and divers manner spake to the fathers through the prophets, but in this last day through Jesus Christ his son. The scripture cannot be tampered with. It's exactly.
और अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाने के आखिर में हमसे यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया। पाक कलाम के साथ गड़बड़ नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल वही है।
As I've said before, God don't need anybody to interpret this word. He interprets his own word.
Amen.
When he says anything, it happens. That's the interpretation.
जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, खुदा को इस कलाम की तर्जमानी के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो आप अपने कलाम की तर्जमानी करता है, क्योंकि जब वो कोई बात कहता है तो वो होती है, और यही तर्जमानी है।
You don't need anyone to say, well, I believe it means this. God identifies it by his own interpretation.
देखें, उसको जरूरत नहीं कि कोई ऐसा कहे, अच्छा मुझे यकीन है इसका मतलब ये है। खुदा आप अपनी तर्जमानी के वसीले उसकी शनाख्त करता है।
If the promise is for that day, we can't live in the light of Luther, we can't live in the light of Wesley, we can't live in the light of any of those. We got to live in the light it's promised for this day.
उसका इस जमाने के लिए वादा मौजूद है, क्योंकि हम लूथर की रोशनी में नहीं रह रहे, हम वेस्ली की रोशनी में नहीं रह सकते, हम उनमें से किसी की रोशनी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे रहने के लिए वो रोशनी है जिसका इस जमाने के लिए वादा किया गया है।
What if Moses would have went down in Egypt and said, well, we're going to build a big ark. We're going to float out of this country. The Nile's going to come up.
क्या होता अगर मूसा मिस्र में गया होता और उसने कहा होता, ठीक है, हम लोग एक बड़ी कश्ती बनाएंगे और इस मुल्क से तैर कर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये दरियाए नील का बहाव ऊपर आ रहा है।
They look back in the scroll, there's no promise of that. That's right. But you see, he identified himself as God's prophet. For what he said come to pass, then they know he had the word of the Lord.
और जब उन्होंने वापस तोमार में देखा तो वहाँ कोई ऐसा वादा मौजूद नहीं था, ये सच है। लेकिन अब तवज्जो दें, उसने खुद को खुदा के नबी की हैसियत से शनाख्त किया, इसलिए जो कुछ उसने कहा वो पूरा हुआ, और वो लोग जान गए कि उसके पास खुदा का कलाम था।
Pharaoh had spears, but Moses had the word. So when they got to the sea, the spears all went under the sea, and Moses took Israel across the sea on dry land because he had the word. And he was the word, of that hour.
फराउन के पास नेजे थे लेकिन मूसा के पास कलाम था. बस जब वो बहरे कुलजम पर पहुंचे तो तमाम नेजे समुन्दर में गर्क हो गए और मूसा खुश्क जमीन से होते हुए इसराइल को समुन्दर पार ले गया क्योंकि उसके पास कलाम था और वो उस जमाने के लिए कलाम था.
Moses was the word made manifest for that hour. Elijah was the word made manifest for that hour. Christ is the word made manifest. And the promises that he made, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you even in you to the end of the world. The works that I do shall you do also.
उस जमाने के लिए मूसा मुजस्सम कलाम था. एलिया अपने जमाने के लिए मुजस्सम कलाम था. मसीह भी मुजस्सम कलाम है और सारे वादे उसमें पूरे किए गए. थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहोगे क्योंकि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा. ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे.
He promised these things. What is it? It's the characteristic of God displaying His word like He did in all ages.
उसने इन कामों का वादा किया है. ये क्या है? ये खुदा की खसूसियत है जो उसके कलाम को जाहिर करती है जिस तरह उसने सब जमानों में किया.
Malachi 4, he said, before the great and terrible day of the Lord shall come, behold, I send unto you Elijah the prophet, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, before that day comes. He promised it.
मलाकी 4 में उसने कहा, देखो, खुदावंद के अजीम और होलनाक दिन के आने से पेशतर, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा. उस दिन के आने से पेशतर, वो औलाद का ईमान दोबारा वालदों की तरफ वापिस बहाल करेगा. उसने इसका वादा किया है.
Jesus said in the 17th chapter of St. Luke, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed.
यीशु ने मुकद्दस लुका के 17वें बाप में कहा, जैसा सदूम के दिनों में हुआ था, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा, जब इब्ने आदम जाहिर होगा.
When the revelation is unfolding itself in the days when the world will be like Sodom, what will it be? The characteristic of that scripture being fulfilled. God identifying himself by his characteristic. Characteristics that he's always been. He cannot leave that.
इन दिनों में जबकि दुनिया सदूम की मानित बन चुकी है और मुकाशवा खुद को अय्यां कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर कलाम के उस हिस्से की खसूसियात पूरी होंगी. खुदा खुद को अपनी खसूसियात से जाहिर कर रहा है जो उसमें हमेशा से रही हैं. वो उन खसूसियात को छोड़ नहीं सकता.
Last days, he identified through his son. Notice how God does these always he never changes his way.
आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे की मार्फत शनाख्त की है. तवज्जो दें कैसे खुदा ये हमेशा से करता आया है और वो अपने तरीके को कभी तब्दील नहीं करता है.
These three men that talked to Abraham, as we were just speaking there, is the days of Sodom.
वो तीन आदमी जो इब्राहिम से मुखातिब हुए, जैसा कि हम सदूम के दिनों के मुतालिक बात कर रहे थे.
Abraham was a man who believed God. He took God at His promise. Sarah, his wife, was 65 years old. Abraham was 75 when God called him.
इब्राहिम वो आदमी था जो खुदा पर ईमान लाया था. उसने खुदा को उसके वादे के मुताबिक लिया था. और जब खुदा ने उसे बुलाया था तो उसकी बीवी सारा 65 बरस की थी और इब्राहिम 75 बरस का था.
He said he's going to have a child. Abraham would have a child by Sarah.
उसने कहा था वो एक बच्चे को पाएंगे. इब्राहिम के लिए सारा से एक बच्चा होगा.
It might sound a little ridiculous, but I imagine she got all the little booties and pins and everything ready because she's going to have this baby.
शायद ये बात थोड़ी सी मजाका खेज लगे लेकिन मैं तसव्वुर करता हूँ उसने छोटी सी जूतियाँ और पिने और सब कुछ तैयार कर लिया होगा क्योंकि वो उस बच्चे को हासिल करने जा रहे थे.
After the first 28 days, why Abraham might have said, "Sarah, how you feel, darling? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How you know? God said so."
पहले 28 दिनों के बाद शायद इब्राहिम ने सारा से पूछा हो, क्यों प्यारी तुम कैसा महसूस करती हो? कोई फर्क नहीं. उसने कहा होगा खुदा को जलाल मिले, किसी भी हाल में हम उस बच्चे को हासिल करेंगे. तुम कैसे जानते हो खुदा ने ऐसा कहा है?
A year passed. How you feel, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
एक साल गुजर गया, प्यारी अब कैसा महसूस करती हो? कोई फर्क नहीं, उसने कहा होगा, हम किसी भी हाल में उस बच्चे को हासिल करेंगे क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा है।
5 years passed. How you feeling out here? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
5 साल गुजर गए, प्यारी अब कैसा महसूस करती हो? कोई फर्क नहीं, उसने कहा होगा, हम किसी भी हाल में उस बच्चे को हासिल करेंगे क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा है।
What was it? He had the promise of God. He believed God. And he acted like God. He held on to the promised word.
ये क्या था? उसके पास खुदा का वादा था। उसने खुदा पर ईमान रखा और उसने खुदा की मानिद अमल किया। वो माउदा कलाम पर कायम रहा।
25 years passed. The booties had done turned yellow, but she still held on to him. Now he's old and stooped over and he's in a terrible shape and Sarah's womb is good as dead and he's sterile. And what a condition they're in.
25 साल गुजर गए थे। वो छोटे छोटे जूते जर्द पड़ गए थे, लेकिन वो अब भी उन्हें थामे हुए थी। अब वो भी बूढ़ा हो गया था और कंधे झुक गए थे और वो एक अजीब शक्ल में डल चुका था। अब सारा का राम भी मुर्दा सा हो गया था और वो भी जरखेज ना रहा था। देखें, अब वो कैसी हालत में पहुंच चुके थे।
How you feel, Abraham, father of nations, is make believer friends and say to him, well, glory to God, I feel fine. We're going to have that baby anyhow.
उसके बनावटी ईमानदार दोस्तों ने उससे पूछा होगा, इब्राहिम, कौमों के बाप, अब तू कैसा महसूस करता है? सब ठीक है, खुदा को जलाल मिले, मैं बेहतर महसूस करता हूँ, हम किसी भी हाल में उस बच्चे को पाएंगे।
Because he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he was fully persuaded that what God said, God's able to perform. There's a characteristic of a believer.
बस वो बेएतकादी की वजह से खुदा के वादे से डगमगाया नहीं, बल्कि वो खुदा को जलाल देते हुए मजबूत था, इसलिए कि वो मुकम्मल तौर पर उस बात का कायल था जो खुदा ने कही थी कि खुदा उस काम को करने पर कादिर है। आमीन। और यही एक ईमानदार की खसूसियत है।
What about you? What about we, the children of Abraham? Are we identified with the word of God as a promise, and our characteristic identifies ourselves that we actually believe it?
आपके मुतल्लिक क्या ख्याल है? देखें, हम जो इब्राहिम की औलाद हैं, हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? क्या हम वादे के तौर पर खुदा के कलाम के साथ शनाख्त होते हैं? और हमारी खसूसियत हमारी शनाख्त करती है कि हम वाकई इस पर ईमान रखते हैं।
Or do we just hem-haw, jump from here and over here and down here and guess and hem-haw around about it? Then we're not Christians. We're just making believe.
या आप सिर्फ बुड़बड़ाते हैं, यहाँ से कूद कर वहाँ पर और फिर नीचे और फिर अंदाजा लगाते हैं, या फिर इससे मुतल्लिक सिर्फ बुड़बड़ाते हैं, तो फिर सुने, हम मसीही नहीं हैं, बल्कि हम सिर्फ बनावटी एतकाद रखने वाले हैं।
But when we really stand to that promise, tow it right there and stay with it. Abraham did.
लेकिन जब हम वाकई उस वादे के साथ खड़े होते हैं, तो उसको ठीक वहाँ खींचते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। इब्राहिम ने ऐसा ही किया।
Now we find out one day he saw three men come walking. The Bible said here it was in the heat of the day. Must have been about noon.
अब हम देखते हैं, एक दिन उसने तीन मर्दों को आते हुए देखा और बाइबल बयान करती है कि वो गर्मी का वक्त था। इसका मतलब है यकीनन दोपहर का वक्त था।
These men walked up and was talking to him. We understand that two of them went out in Sodom. I believe we spoke on it the other night. One of them stayed with him.
और वो मर्द वहाँ आए और उससे बातें कर रहे थे। हम इस बात को समझते हैं कि उनमें से दो सदूम को चले गए। मुझे यकीन है हमने किसी रात इस पर बात की थी और उनमें से एक उसके साथ रहा।
What's this man that he called that stayed with him? What the man did? One was identified by his characteristic that he was Elohim.
उस एक मर्द पर तवज्जो दे। वो जो उसके साथ रहा, उस मर्द ने क्या किया? उसकी खसूसियत की बदौलत उसकी एक शनाख्त हुई कि वो एलोहिम था।
Elohim, the very first word in the Bible, in the beginning, God. Now, any of you scholars know that that word God there means in the Hebrew is Elohim, which means the Almighty, the All-Sufficient, the Self-Existing.
Elohim, यही पहला लफ्ज बाइबल में है जहां लिखा है ابتدا میں خدا نے. اب آپ سکولر لوگوں میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ لفظ خدا کا مطلب عبرانی میں ایلوہیم ہے, جس کا مطلب ہے قادر مطلق, خود کفیل, وجود رکھنے والا.
Needs no help from nobody.
Amen.
Needs nobody's interpretation. He does his own.
Yes.
He's the all-sufficient God.
Yes.
Omnipresent, omniscient,
yes.
Omnipotent. He's God.
جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ترجمانی کی ضرورت ہے. وہ آپ اپنا ترجمان ہے. وہ خود کفیل ہے, ہر جگہ موجود اور قادر مطلق خدا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے.
There he was. And Abraham now, this patriarch who had a hold to the word, looked at this fella, and when this fella had his back turned to the tent, he said, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you.
اور وہ وہاں موجود تھا, اور اب ابراہیم وہ بزرگ تھا جس نے کلام کو تھاما ہوا تھا, اس نے اس شخص پر نظر کی, اور جب وہ شخص اپنی پیٹھ کو خیمہ کی جانب کیے ہوئے تھا تو اس نے پوچھا, اب تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا, وہ تیرے پیچھے خیمے کے اندر ہے.
Said, I'm going to visit you according to the time of life and you'll have this baby that I promised you. And Sarah laughed about it, and the one was talking to him told him what Sarah said in the tent behind him.
اس نے کہا, میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور تو اس بچے کو حاصل کرے گا جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. اور سارا اس بات پر ہنسی, اور وہ جو اس سے بات کر رہا تھا اس نے اسے بتایا کہ سارا نے خیمے کے اندر اس کے پیچھے کیا کہا ہے.
Now in Genesis you read that. We find out that then Abraham, after this man had identified himself, what was it? Hebrews 4th chapter, the 12th verse said, the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart.
اب دیکھیں, پیدائش میں آپ اس بات کو پڑھیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم سے ملنے کے بعد اس شخص نے اپنی شناخت کروائی. یہ کیا تھا؟ عبرانیوں 4:12 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے.
He knew that this was the man. He knew there's no prophets in the land but him. And therefore the word of the Lord had come to him and he was a prophet and here the word come to the prophet.
وہ جانتا تھا کہ وہ وہی مرد ہے. وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اس سرزمین میں کوئی نبی نہیں, اور اس لیے خداوند کا کلام اس کے پاس آیا تھا, اور وہ نبی تھا, اور وہاں کلام نبی کے پاس آیا تھا.
Same thing with John the Baptist. There had not been a prophet for 400 years. I remember maybe old Dr. Davis is sitting here tonight, the old missionary Baptist preacher that baptized me in the faith. He used to argue with me.
بالکل یہی بات یوحنا استباغی کے ساتھ تھی. وہاں 400 سالوں سے کوئی نبی نہیں تھا, اور مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے کہ آج رات یہاں پرانے ڈاکٹر ڈیوس بیٹھے ہوں. وہ پرانے مشنری بیپٹسٹ مناد ہیں جنہوں نے مجھے اس ایمان میں بپتسما دیا تھا, اور وہ اکثر مجھ سے بحث کیا کرتے تھے.
He said, Billy, you're just a kid now. You got to listen to me. I said, all right, Brother Davis, I'm listening.
اس نے کہا, بلی, تم محض ابھی بچے ہو, تمہیں میری سننی چاہیے. میں نے کہا, ٹھیک ہے بھائی ڈیوس, میں سن رہا ہوں.
He said, you see, John was not baptized. So he had been baptized, but hadn't been baptized, nobody's worthy to baptize him. That's good Baptist theology.
اس نے کہا, تم غور کرو, یوحنا کو بپتسما نہیں دیا گیا تھا, لہذا اس نے صرف بپتسما دیا تھا, لیکن اس نے خود بپتسما نہیں لیا تھا, کیونکہ کوئی اس کو بپتسما دینے کے لائق نہیں تھا. اب یہ بڑی اچھی بیپٹسٹ تھیولوجی ہے.
Here come Jesus and said, then John said, I have need to be baptized to thee. Why comest thou to me? And he said, suffer to be so.
اور یسوع وہاں آیا اور اس وقت کہا, یوحنا نے کہا, میں تو خود تجھ سے بپتسما لینے کا محتاج ہوں, اور تو میرے پاس آیا ہے. اس نے جواب دیا, اب تو ہونے ہی دے.
He said, and then when he suffered him, said, you see, then Jesus baptized John.
اس نے کہا, تم غور کرو, اس پر اس نے اس کے ساتھ ہونے دیا. اس نے کہا, اس وقت یسوع نے یوحنا کو بپتسما دیا.
And when he went out of the water, then the heavens opened, he saw God in the form of a dove coming down, going on, and said, "This is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in."
और जब वो पानी से बाहर आया, तो उस वक्त आसमान खुल गया, और उसने खुदा को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ।
But no, not disagreeing with Dr. Davis, but he was wrong. See, John was the prophet, and the word always comes to the prophet. So if the word was made flesh, it had to come to the prophet anyhow.
Amen.
Because he is testifying of the word, and his very characteristic identified him.
Yes.
मगर मैं हर किस डॉक्टर डेविस से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन वो गलत था। देखें, यूहन्ना नबी था, और कलाम हमेशा नबी के पास आता है। लिहाजा अगर कलाम मुजस्सम हुआ था, तो किसी भी हाल में उसे नबी के पास आना था, क्योंकि वो कलाम की गवाही देता है। और उसकी वही खसूसियत उसकी शनाख्त करती है।
Here comes the word. Now, what happened? As soon as he walked into the face of Jesus, John said, "I have need to be baptized of thee. Why comest thou to me?" Jesus said, "Suffer it to be so. For thus it is becoming to us, behooveth us, to fulfill all righteousness."
और अब जब वहां कलाम आया, तो देखें क्या हुआ। जैसे ही वो चलता हुआ यीशु के सामने आया, तो यूहन्ना ने कहा, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तू मेरे पास आया है। यीशु ने कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें मुनासिब है, हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है।
John being the prophet, him being the word, he was the sacrifice, and he was fixing to enter his earthly ministry, and the sacrifice had to be washed before it was presented.
देखे, यूहन्ना नबी की हैसियत से और वो कलाम की हैसियत से मौजूद था। यीशु कुर्बानी था, और वो अपनी जमीनी खिदमत में दाखिल होने के लिए तैयार था, और इससे पहले के कुर्बानी पेश की जाती, उसको धोया जाना था।
John baptized him, because he knows suffer that to be so, for thus it's becoming to us to fulfill all righteousness. The sacrifice had to be washed before presented. And so John baptized him. Well, not Jesus baptizing John. John baptized Jesus. Suffer it to be so.
और यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो जानता था, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इससे पहले के कुर्बानी पेश की जाती, उसको धोना था, लिहाजा इसलिए यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया था। ऐसा नहीं था कि यीशु यूहन्ना को बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था, अब होने ही दे।
Notice here was Abraham. And he had the word of the Lord. The word of the Lord come to him. He was the prophet. And now here comes the word. He called him Abraham, not Abram.
तवज्जो दें, वहां इब्राहिम था और खुदावंत का कलाम उसके पास था। खुदावंत का कलाम उसके पास आया था, क्योंकि वो नबी था। और जब कलाम आया, तो उसने उसे अब्राहम ना के अब्राम कहा।
A few days before that, his name was Abram. Now it's Abraham. His wife is Sarah. Now it's Sarah. Not S-A-R-A-S-A-R-A-H. Not A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M, but A-B-R-A-H-A-M. Abraham.
लेकिन उससे चंद दिन पहले उसका नाम अब्राम था, लेकिन अब उसका नाम इब्राहिम है। उसकी बीवी का नाम सारी था, लेकिन अब उसका नाम सारा है, ना के S A R R A, बल्कि S A R A H, A B R A H A M, ना के A B R A M, बल्कि A B R A H A M, इब्राहिम।
And this man identified himself when he said Abraham.
Amen.
Oh my. Abraham said, Elohim. There's the word and the prophet together. Both characters identified.
और उस मर्द ने खुद की शनाख्त करवाई, जब उसने कहा, इब्राहिम, ओ मेरे खुदाया, और इब्राहिम ने कहा, एलोहिम। देखें, कलाम और नबी एक साथ हैं, और दोनों की खसूसियात की शनाख्त हुई।
Elohim. He said, where is your wife, Sarah? Said she's in the tent behind you, and then the miracle was done. Elohim. Abraham called him the all-sufficient, almighty, omnipotent God.
Elohim ne kaha, teri biwi Sara kaha hai? उसने कहा वो तेरे पीछे खेमे के अंदर है और उस वक्त मौजजा हो चुका था। एलोहिम इब्राहिम ने उसे खुद कफील कादरे मुतलिक इख्तियार वाला खुदा कहा।
Jesus said, when he was on earth, he did the same thing that Elohim did. That identified his characteristic as being God.
यीशु ने कहा जब वो जमीन पर था तो उसने बिल्कुल वही काम किया जो एलोहिम ने किया, यानी खुदा होने की हैसियत से उसकी खसूसियत की शनाख्त हुई।
And he said before in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's being revealed, this setting will take place again like it was at Sodom. Elohim among his people.
Amen.
Almighty God. That's what the scripture says.
Yes, that's
right. Elohim among the people.
और उसने कहा, जैसा सदूम के दिनों में हुआ था, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा, और आखिरी दिनों में जब वो जाहिर होता है तो वही चीज दोबारा वकू पजीर होती है। एलोहिम यानी कादरे मुतली खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। ये वो बात है जो कलाम कहता है, एलोहिम अपने लोगों के दरमियान मौजूद है।
For 40 years he's been baptized with the Holy Ghost. Elohim, God, and the church. Look, Abraham seemed one sign. Another calling, a sign, a calling, a calling, a sign, waiting for that promised son.
वो एलोहिम खुदा 40 सालों से हमें रुलकुस के साथ बपतिस्मा देता आ रहा है, और कलीसिया देखें, इब्राहिम ने एक निशान देखा, एक और बुलाहट, एक निशान एक बुलाहट है, और एक बुलाहट एक निशान है, जो के उस वादे के फर्जंद का मुंतजिर होना था।
But the last sign that he saw, the last appearing, the last visit of God before the promised son arrived on the scene was Elohim in human flesh.
Amen.
Then the promised son come.
लेकिन आखिरी निशान जो उसने देखा, जो के आखिर में जाहिर हुआ था, इससे पहले के वो वादे का फर्जंद मंजर पर आता, ये खुदा का आखिरी दौरा था और एलोहिम इंसानी जिस्म में मौजूद था। उसके बाद वादे का फर्जंद आया।
And Abraham's seed is waiting for the promised son, Jesus Christ. And they've seen signs of pouring out of the Holy Ghost, speaking in tongues, divine healing, and so forth.
और अब इब्राहिम की नस्ल वादे के फर्जंद यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, और इन्होंने निशानात, रूहुल कुद्स का नजूल और गैर जुबानों में बोलना और इलाही शिफा को देख लिया है, और वगैरह वगैरह।
But when the Son of Man is being revealed, Elohim will return back to the royal seat of Abraham and show that same thing that he showed in that day. Amen. Elohim, as it was. Why? It'd be the characteristic of God.
लेकिन जब इब्ने आदम जाहिर होता है तो एलोहिम इब्राहिम की शाही नस्ल के पास लौट आता है और बिल्कुल वही निशान दिखाता है जो उसने उस जमाने में दिखाए थे। आमीन। वैसा ही एलोहिम जैसा वो तब था। क्यों? इसलिए कि यही खुदा की खसूसियत है।
Now if Christ was God, yet a little while the world sees me more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you to the consummation, the end. The works that I do, shall you do also. Jesus said that in Luke the 17th chapter.
अब मसीह खुदा था और उसने कहा, थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा। ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। यीशु ने ये लूका के 17वें बाप में कहा।
All right. When we believe and see these last days, this setting is to be reacted again. Therefore, Hebrews 1:1, God in sundry times by the prophets identified himself in this last days has identified the resurrection of his son from the dead. By giving the church the same characteristic that he had, making Hebrews 13:8 exactly right.
ठीक है। जब हम ईमान लाते हैं और फिर इन आखिरी दिनों को देखते हैं, तो दोबारा उस तरतीब के रद्द अमल का इजहार किया जाना है। इसलिए अब्रानियों 1:1 में मरकूम है, اگلے زمانے میں خدا نے نبیوں کی معرفت خود کو شناخت کروایا اور اس آخری زمانے میں اپنے بیٹے کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے شناخت کرواتا ہے، اور کلیسیا کو بالکل وہی خصوصیت دی گئی ہے جو اس کے پاس تھی، اور یوں اس نے عبرانیوں 13:8 کو بالکل سچ ثابت کیا ہے.
No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers. They stay tight because they're heavenly bird. They feed some eagle food.
اس سے پروں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، یہ عقاب کے پر ہیں، یہ مضبوطی سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسمانی پرندہ ہے، وہ ان کو عقاب کی خوراک کھلاتے ہیں.
Now we notice that in the sundry times, divers manner, he spoke to the fathers through the prophets, in the last days through his son Jesus Christ by raising him up from the dead.
اب ہم اس پر توجہ دیتے ہیں، اگلے زمانے میں حصہ بحصہ اور طرح بطرح باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس آخری زمانے میں اپنے بیٹے یسوع مسیح یعنی اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے کلام کیا.
And here he is among us after 2,000 years. The same Jesus. Not one of the prophets. Jesus. Hallelujah. The resurrected Son of God.
اور بالکل وہی یسوع 2,000 سال کے بعد بھی ہمارے درمیان موجود ہے، نہ کہ کوئی نبیوں میں سے، بلکہ وہی یسوع ہاللویہ جو خدا کا زندہ بیٹا ہے.
Jesus said one day, he said, a wicked and adulterous generation seek after a sign, and they'll get a sign. A wicked and adulterous generation. When was the world any more wicked or adultery and perverted than it is now?
یسوع نے ایک دن کہا، اس نے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں اور انہیں ایک نشان دیا جائے گا. اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ، اس زمانے سے بڑھ کر دنیا میں کون سا زمانہ زیادہ گناہگار، زناکار اور بھٹکا ہوا ہے؟
As it was in the days of Jonas, as Jonas was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights.
کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن ویل مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا.
Then a wicked and adulterous generation was to receive a sign. What kind of a sign? A sign of the resurrection.
Amen.
And we have it today after 2,000 years. He's still alive. He's among us tonight, the same yesterday, today, and forever. Identifying himself by the characteristics of God, manifesting the word in this day that he promised to do. Amen.
پھر اس زمانے کے برے اور زناکار لوگوں نے ایک نشان جو حاصل کرنا تھا، کس قسم کا نشان تھا؟ جی اٹھنے کا نشان. آج 2,000 سالوں کے بعد وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ اب بھی زندہ ہے. آج رات وہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور خود کو خدا کی خصوصیات کے وسیلہ سے شناخت کروا رہا ہے، جو اس زمانے میں کلام کی صورت میں مجسم ہوا ہے، جس کا اس نے کرنے کا وعدہ کیا تھا. آمین.
There's the word. How will you believe the sign? Is the next thing. Last days, his identification by his son.
کلام موجود ہے. اب اگلی بات، اس آخری زمانے میں اس کے بیٹے کے وسیلہ اس کی شناخت ہے. کیا آپ اس نشان کا یقین کریں گے؟
Notice, God spake to Moses in sundry times in the Deuteronomy 18:15. Said, the Lord your God shall raise a prophet like it unto me.
توجہ دیں، خدا نے اگلے زمانے میں موسیٰ سے کلام کیا، اور استثنا 18:15 میں کہا، خداوند تمہارا خدا میری مانند ایک نبی برپا کرے گا.
Now watch, that's the word. That is the word. That was God. That wasn't Moses. How would Moses know that? He was a man. But God speaking through Moses said this. You believe that?
Yes.
All right.
اب غور کریں، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ خدا تھا، یہ موسیٰ نہیں تھا. موسیٰ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو ایک انسان تھا، بلکہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ یہ کہا تھا. کیا آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
Now notice Jesus. Watch how his characteristics identified this promised word true. It certainly did. He was identified by this characteristic that Moses said he would be.
اب یسوع پر توجہ دیں, دیکھیں کیسے اس کی خصوصیات نے شناخت کیا کہ یہ معودہ کلام سچا ہے. اس نے یقیناً ویسا ہی کیا. وہ اس خصوصیت کی بدولت شناخت ہوا تھا جو موسیٰ نے کہی تھی کہ وہ ایسا ہوگا.
Many of them, like today, they want to see some great leader. Oh, this is Dr. P.H. so-and-so. He's out of Hartford University, or he's out of some great big somewhere like that. That's no identification of God. No, no. Not a thing about it. The Word's what identifies God.
جیسے آج لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جو کسی عظیم لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہو, یہ ڈاکٹر پی ایچ فلاں فلاں ہے, وہ ہارڈ فورڈ یونیورسٹی سے آیا ہے, یا وہ کسی ایسی ہی بڑی عظیم جگہ سے آیا ہے. یہ خدا کی شناخت نہیں ہے. نہیں, ہرگز نہیں. اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے, بلکہ کلام ہے جو خدا کی شناخت کرتا ہے. سمجھے؟
Jesus was not a scholar, neither was he a priest, neither was he a rabbi to the world. He was a renegade to the world.
یسوع دنیا کی نظر میں کوئی عالم نہیں تھا, نہ ہی وہ کوئی پریسٹ تھا, اور نہ ہی وہ کوئی ربی تھا, بلکہ وہ دنیا کی نظر میں ایک باغی تھا.
But God was confirming his word to him, which made him Emmanuel. That was his identification.
لیکن خدا اس کے وسیلہ اپنے کلام کی تصدیق کرا رہا تھا جسے اس نے ایمینوئل بنایا. یہی اس کی شناخت تھی.
Now, here Jesus meeting this exactly what God in sundry times said he would do through Moses, what he would do.
اب یہاں یسوع بالکل وہی کام کر رہا ہے جو خدا نے اگلے زمانے میں کہا تھا کہ وہ کرے گا, جو اس نے موسیٰ کے وسیلے کہا تھا کہ وہ کرے گا.
Now watch, when he met Peter, as we dramatized it the other night, when he met Peter and told Peter what his name was, this sign identified his Messiah claims to Peter. For the word had said, the Lord your God shall raise up a prophet.
اب دھیان دیں, جب وہ پترس سے ملا, جیسے کسی رات ہم نے اسے ڈرامائی طور پر دیکھا تھا, جب وہ پترس سے ملا, پترس کو بتایا کہ اس کا نام کیا ہے. اس نشان نے پترس کے سامنے اس کے مسیحانہ دعویٰ کو شناخت کیا, کیونکہ کلام نے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا ایک نبی برپا کرے گا.
And Peter come up, which was Simon then, come up where he was at, and Jesus looked at him and said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified the character of Christ to be that word that Moses promised.
اور جب پترس وہاں آیا, جو کہ اس وقت شمعون تھا, وہ وہاں آیا جہاں وہ اس وقت تھا, اور یسوع نے اس پر نگاہ ڈالی اور کہا, تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے. اسی خصوصیت نے مسیح کی وہ کلام ہونے کی شناخت کی جس کا موسیٰ نے وعدہ کیا تھا.
Peter recognized that that sign identified Jesus as Messiah. God was in Christ, the anointing for the last days.
اس نشان کے وسیلے پترس پہچان گیا کہ یسوع ہی مسیحا ہے, کیونکہ آخری دنوں میں مسیح کے لیے خدا مسیح میں تھا.
To Nathaniel, remember, he told Simon his name. Now watch. To Nathaniel, he told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him, Messiah.
نیتنیل, یاد ہے اس نے شمعون کو اس کا نام بتا دیا. اب توجہ دیں کہ نیتنیل کو اس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا. جب تو درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. اسی خصوصیت نے اس کے مسیح ہونے کی شناخت کی.
Said, you are the son of God.
Amen.
You are the king of Israel. He was identified by the characteristic of the promised word that he was to be the Messiah. The Lord your God shall raise a prophet.
اس نے کہا, تو خدا کا بیٹا ہے, تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اس معودہ کلام کی خصوصیت سے اس کی شناخت ہوئی تھی کہ اسے ہی مسیحا ہونا ہے. خداوند تمہارا خدا ایک نبی برپا کرے گا.
The little woman at the well, he told her what she was, and that identified him as this promised Messiah.
وہ عورت جو کنویں پر تھی, اس نے اس کو بتایا کہ وہ کیا تھی, اور اس خصوصیت نے اس کی معودہ مسیح کی حیثیت سے شناخت کروائی.
See, his character, his characteristics was the word being identified was his characteristics, showing that the Word was God, so that was God being identified in Christ.
Amen.
देखें, उसका करदार, उसकी खसूसियात, कलाम होते हुए शनाख्त की जा रही थी। उसकी खसूसियात जाहिर कर रही थी कि कलाम में खुदा था, लिहाजा ये मसीह में खुदा की शनाख्त की जा रही थी।
Watch it, note. To Peter, he was identified to Peter by calling his name. He was identified to Nathaniel by telling what he'd done. He was identified by the woman by telling what she was.
अब इसको देखें, तवज्जो दें। पत्रस के सामने उसका नाम बताने से उसकी शनाख्त पत्रस के सामने हुई। नेथनेल के सामने उसकी शनाख्त इसलिए हुई कि उसने उसे बताया कि उसने क्या किया था, उस औरत ने क्या किया था, ये बताने की वजह से उस औरत के सामने उसकी शनाख्त हुई।
What he, who he was, what he done, and what she was. He identified his Messiah characteristic that was to be the characteristic of the Messiah.
वो क्या है, वो कौन था, उसने क्या किया था, और वो औरत पहले क्या थी, उसने अपनी मसीहा होने की खसूसियत को जाहिर किया, जैसी मसीह की खसूसियत होनी चाहिए थी।
Look at the little woman say the same thing. Sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had a prophet for hundreds of years. We've had plenty of church, plenty of fusses and denominational difference, but we haven't had a prophet for hundreds of years.
उस औरत पर गौर करें, जिसने बिल्कुल ये बात कही, जनाब, मुझे मालूम होता है कि आप नबी हैं, क्योंकि सैकड़ों सालों से हमें कोई नबी नहीं मिला। हमारे पास कलीसिया की बौतात है और शोरगुल करने वालों और तंजीमी तफरीक की बौतात है, लेकिन सैकड़ों सालों से हमें कोई नबी नहीं मिला।
We know that when Messiah cometh, this is what will identify him. He said, I'm he that speaks to you. Yes. Nothing uncertain about it. I am he. That identified him.
हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो ऐसी बातें उसकी शनाख्त करेंगी। उसने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इसके मुतल्लिक कोई मशकूक बात नहीं। मैं वही हूँ। यही उसकी शनाख्त है।
The woman with the blood issue identified him the Word. Wow. By what he done when her faith touched him. He turned around and said, who touched me? He knowed something happened that identified Jesus as Messiah.
वो औरत जिसके खून जारी था, तब उसकी शनाख्त कलाम की हैसियत से हुई। कैसे? जब उस औरत ने ईमान से उसे छुआ और जो कुछ उसने किया था उसकी बदौलत शनाख्त हुई। वो इर्द गिर्द घूमा और कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? वो जानता था कुछ हुआ है। इसी चीज ने यस्सु को मसीह की हैसियत से शनाख्त करवाया।
She believed it, and she said, if I can touch his garment, I'll be made well. So as soon as she touched, he turned. Said, now who touched me? And they all denied it. But his Messiah characteristic. Amen.
Amen.
I hope you see that congregation. Listen as we're closing.
क्योंकि वो इस बात पर ईमान रखती थी और कहती थी, अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लिहाजा जैसे ही उसने छुआ, वो घूमा और कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? और उन सब ने इस बात का इनकार कर दिया, लेकिन उसकी मसीहाई खसूसियत मौजूद थी। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो जमात में हैं इस बात को समझ गए हैं। सुने, जबकि हम खत्म कर रहे हैं।
There. She touched him. There was hundreds maybe trying to touch him. Peter even rebuked him, said, well, all of them is touching you. He said, yes, but somebody touched me different. That's that different, that faith touch.
उस औरत ने उसे छुआ। हो सकता है वहाँ सैकड़ों लोग उसे छूने की कोशिश कर रहे हों। हत्ता के पत्रस ने उसको मलामत की और कहा, अच्छा, मगर उनमें से सारे लोग तुझे छू रहे हैं। उसने कहा, हाँ, लेकिन किसी ने मुझे मुख्तलिफ तरीके से छुआ है। यही वो मुख्तलिफ तरीका है। उस ईमान ने छुआ।
Said somebody touched me. It was a different touch. I got weak. Strength went out of me. Virtue's gone from me. Now there he stands.
देखें, उसने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि ये छूना मुख्तलिफ था। मैंने कमजोरी महसूस की है। कुवत मुझसे निकली है। नेकी मुझसे निकली है। अब देखें, वो रुक जाता है।
Now even his own disciple saying, in other words, you sound like you were some delinquent person. Well, people, everybody's touched it. Watch his identification now.
अब देखें, दूसरे लफ्जों में, हत्ता के उसके अपने शागिर्द कह रहे थे, तेरे कहने का मतलब है तू कोई अलग थलग शख्स है क्यों, जबकि सब लोग तुझे छू रहे हैं। उसकी बात पर तवज्जो दें, अब उसकी शनाख्त को देखें।
He turned around, looked through the crowd. He singled her right out. She couldn't hide herself any longer. He told her of her condition and said her faith had made her well.
वो इर्द गिर्द घूमा और उसने भीड़ पर नजर की और उसने ठीक उस औरत को तलाश कर लिया और वो मजीद खुद को छुपा ना सकी और उसने उस औरत को उसकी हालत से आगाह किया और कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया।
She knew by this that Hebrews 4:12 the word discerns the thoughts its intents of the heart. His characteristic identified him to be the word of God made flesh and dwelling among us. Amen.
इसी बात से वो जान गई, इसलिए इब्रानियों 4:12 में लिखा है कलाम दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। उसकी खसूसियत ने उसको इस तरह शनाख्त होने दिया कि खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। आमीन।
I think the same thing tonight identifies him, the resurrected Jesus Christ living among us tonight, the same yesterday, today and forever.
और मेरा ख्याल है बिल्कुल वही बात आज रात उसको शनाख्त करवा रही है जो जिंदा यीशु मसीह की हैसियत से आज रात हमारे दरमियान मौजूद है, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
Now, Hebrews 13:8 is true. His character will identify him today as it did then, the same manner.
अब इस तरह अब्रानियों 13:8 सच है, उसकी खसूसियत ही उसे आज भी बिल्कुल उसी तरह शनाख्त करवा रही है जैसे उसने उस वक्त किया था।
Look at Theopius and them after the resurrection. Jesus identified himself the way he broke that bread. They had done it just the way he did it before he was crucified. And that identified his characteristic because that's the way he did it.
जी उठने के बाद कलीपास और उन पर तवज्जो करें। यीशु ने अपनी शनाख्त इस तरह करवाई जब उसने उस रोटी को तोड़ा। उसने ये काम बिल्कुल उस तरह किया जिस तरह उसने उसको मसलूब होने से पहले किया था, और वो बल्कि इसी बात ने उसकी खसूसियत की शनाख्त करवा दी क्योंकि इसी तरह से उसने पहले किया था।
Now, if he was sure tonight, how would he identify himself? It's like he did yesterday. For it's the same today and will be forever. It's identification.
अब अगर वो आज रात यहाँ मौजूद है तो वो खुद की शनाख्त कैसे करवाएगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने गुजरे कल करवाई थी, क्योंकि वो आज भी यकसा है और अब तक रहेगा, यही शनाख्त है।
Hebrews 4:14 and 15, he is now, says, he is our high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
अब्रानियों 4:14-15 में वो इस तरह कहता है, लिखा है वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों के बाइस छू सकते हैं।
He is our high priest. Right now, after his resurrection, Amen. After his death, Amen. After his burial, after his resurrection, after his ascension, Amen. Amen. He still remains
Amen.
The same yesterday, today, and forever, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmity. Amen.
वो ठीक अब भी हमारा सरदार काहिन है, उसके जी उठने के बाद, उसके मसलूब होने के बाद, उसके दफनाने के बाद, उसके जी उठने के बाद और उसके उठाए जाने के बाद, आमीन, वो अब भी कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, यानी एक ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों के बाइस छू सकते हैं, आमीन।
He's that right now to every man and woman here that'll believe it. He is our high priest. Same yesterday, today and forever.
इसलिए हर एक मर्द और औरत जो उस पर ईमान लाएगा उसके लिए वो ठीक अब भी यकसा है, वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
He ever lives. Do you believe that? His characteristics continually identify him the same as he was when he lived on earth. He's still living here tonight in the form of the Holy Spirit.
वो अब तक जिंदा है, क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? उसकी खसूसियात मुसलसल उसकी शनाख्त वैसे ही करवाती हैं जैसे वो पहले जमीन पर था, और वो आज रात भी रुल कुछ की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है।
He ever lives. And his characteristics follow him just as it always did if he's still living.
क्योंकि वो अब तक जिंदा है और अगर वो अब भी जीता है तो उसकी खसूसियात उसकी पैरवी करती हैं जैसे वो हमेशा पैरवी करती थी.
I'm thankful tonight that God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets in this last days through his son Jesus Christ.
आज रात मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया.
Ma, I didn't know how to talk that long. I forgot about it being like that. I'm sorry. I'll stop. Let us pray.
मेरे खुदाया, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इस कदर लंबी बात कर ली है. मैं इस तरह करते हुए भूल गया था. मैं माफी चाहता हूँ. बस मैं अब बंद कर रहा हूँ. आए दुआ करें.
Heavenly Father, great merciful God. Lord, maybe I talk too much. I pray, God, if I did, you'd forgive me. But Lord, I cannot ask forgiveness for what I said. I said just what you've said in your word here.
आसमानी बाप, तू जो अजीम रहम वाला खुदा है, खुदावंद, मैंने हो सकता है मैंने काफी लंबी बात कर ली है. ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया है तो तू मुझे माफ कर दे. लेकिन खुदावंद, मैं उस कलाम के लिए माजरत खा नहीं हूँ जो मैंने बयान किया है, क्योंकि मैंने वही कुछ कहा है जो तूने अपने कलाम में यहाँ कहा है.
Now just a word or two from you, Lord. Maybe everyone here will see it tonight. The little sick people will be healed when they see that you're still our great high priest.
अब खुदावंद, ये तो बस एक या दो लफ्ज तेरी तरफ से हैं, और होने दे कि हर एक आज रात इस बात को देखे और ये थोड़े से बीमार लोग शिफा पा जाएं, जब ये देखते हैं कि तू आज भी हमारा सरदार काहिन है.
I pray, Lord, in these next few minutes that you'll make this message live again in reality. What I've said by word, may your characteristic identify you among us tonight, that you are the same yesterday, today, and forever. For it's in Jesus' name we ask it. Amen. Amen.
खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि अगले चंद मिनटों में तू इस पैगाम को हकीकत में एक बार फिर जिंदा बना दे, ताकि जो कुछ मैंने कलाम की बदौलत कहा है, होने दे के आज रात तेरी खसूसियत हम में शनाख्त हो कि तू कल और आज बल्कि अब तक यक्षा है. बस हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन.
Just a moment. I'm just a little late, but would you all suffer long enough to have a little prayer line for 15-20 minutes? If you will, hold up your hand and say, thank you. I promised to let you out at 9:30. It's that time now. It's 20 minutes till. So if you'll just give me about 10 minutes, I'll hurry right up.
अब जरा एक लम्हा ठहरे. बल्कि मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन क्या आप सब 15 या 20 मिनट के लिए एक दुआया कतार लेने तक बर्दाश्त करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना हाथ उठाएं और कहें, हम ठीक है, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मैं आपको 9:30 बजे तक छोड़ने का वादा करता हूँ. अब ये वक्त आ पहुँचा है और मजीद 20 मिनट और हैं, लिहाजा अगर आप सिर्फ मुझे 10 मिनट देंगे तो मैं जल्दी करूँगा.
What were we start the other night?
One? I think it was one.
Yeah. And then the Holy Spirit.
आए देखते हैं कि आज उन्होंने कौन से दुआया कार्ड दिए थे. ओ, क्या गुजरी रात हमने कहाँ से शुरू किया था? एक से? हाँ, जी हाँ. और फिर गुजरी रात हमने बस देखा कि रुलकुस मौजूद था.
I was listening today, repeating what was said. Some of them French names. The Holy Spirit, only way I can do it, just wait and see.
और जो कुछ कहा गया था मैं उसे दोहरा रहा था और आज उसे सुन रहा था. उनमें से बाज फ्रेंच नाम थे और मैं रूल कुछ मौजूद है. अब सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं ऐसा कर सकता हूँ. मैं बस इंतजार करता हूँ और देखता हूँ.
See, sometimes when you see a vision, it's got to be turned around and translated. It's interpreted. A vision. Like you'd see a sheep. That might mean wool. See, you have to have also the translation of it. See? And turn that vision around and translate it.
देखें, जब आप एक रोया देखते हैं, तो ये इर्द गिर्द घूमती है और फिर तफसीर होती है. उसकी तफसीर होती है. एक रोया में जैसे आप एक बेड देखेंगे, اس سے مراد اون ہو سکتی ہے. آپ کے پاس اس کی تفسیر ضرور ہونی چاہیے. غور کریں, اس رویا کی طرف مڑیں اور اس کی تفسیر کریں.
I noticed last night I couldn't pronounce those French names. I had to spell it out in Africa and around those Hottentots and heathens and things. It would spell their name right out. Tell them who they were. Spell it right out in their language. They know what it was as soon as you spell it out. But he knows all languages.
Amen.
He's the eternal God.
اور گزری رات میں نے غور کیا کہ میں ان فرینچ ناموں کا تلفظ ادا نہیں کر سکا تھا. مجھے ان کے ہجے کرنے پڑے تھے. افریقہ میں اور ارد گرد ان جنگلی اور بت پرست اور دوسری جگہوں پر ان کے نام کے ہجے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. انہیں بتائیں کہ وہ کون تھے اور ان کی زبان میں ٹھیک اس کے ہجے کریں, اور جیسے ہی آپ اس کے ہجے کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا تھا. مگر غور کریں کہ وہ تمام زبانوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ ابدی خدا ہے.
Let's start tonight from, let's say 75 to 100 and O. Is O, is that what he said? Yeah. All right.
آئیں آج رات ہم او میں سے 75 سے لے کر 100 تک لیتے ہیں. کیا او ہے؟ یہی ہے. اس نے کہا تھا میں او جی ہاں ٹھیک ہے.
Who's got prayer card 75? Let's see it. In O, prayer card O 75. Raise up your hand. Ever who has it. O, all right. Come right over here.
دعایا کارڈ 75 کس کا ہے؟ آئیں اسے دیکھتے ہیں. او, میں. دعایا کارڈ او 75. جس کے پاس یہ ہے اپنا ہاتھ اٹھائے. او ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک یہاں آ جائیں.
75, 80, 85, 90, 95, 100. Come this way if you will. All right, line right up over here right quick because we won't have time. I'm going to just trust that you'll do it.
75, 80, aur 85, 90, 95, 100. Agar aap aayenge to is taraf aaye. Theek hai, ye qatar theek yahan hai. Jaldi kare kyunki hamare paas waqt nahi hai. Main bharosa karta hu ki aap aisa hi karenge.
Look at your prayer card. Look at your neighbor's prayer card. What if somebody's crippled up, move them right up in the prayer line. So if they got O, like this O, 75 to 100. Line up right over here if you will.
اپنے دعائیہ کارڈ پر غور کریں اور اپنے ساتھ والے کے دعائیہ کارڈ پر توجہ دیں. کیا ہے؟ اور اگر کوئی معذور ہے تو انہیں دعائیہ قطار میں لائیں. اور اگر ان کے پاس او ہے, جیسے کہ او 70 ہے, بلکہ 75 سے 100 تک ہے, اور اگر آپ آئیں گے تو ٹھیک یہاں پر قطار لگائیں.
Wherever you are in the balconies, wherever you are, come right down and come to the line as quick as possible, if you will, so to save time.
آپ جہاں کہیں بھی ہیں, چاہے بالکونی میں یا جہاں کہیں زیادہ ہیں, ٹھیک نیچے آ جائیں. اور اگر آپ آئیں گے تو جتنی جلدی ممکن ہے قطار میں آ جائیں تاکہ وقت بچایا جائے.
Now the rest of you here that does not have a prayer card, will you raise your hands and say, I haven't got a prayer card, Brother Branham, but I believe, raise your hands.
اور آپ میں سے جو باقی ہیں جن کے پاس دعائیہ کارڈ نہیں ہے, کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے, بھائی برہنم, میرے پاس دعائیہ کارڈ نہیں ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں, تو اپنے ہاتھ اٹھائیں.
I remember I'm going to talk to you about the high priest. He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
اب یاد رکھیں, میں آپ سے سردار کاہن کے متعلق بات کرنے لگا ہوں کیونکہ وہ ایسا سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوریوں میں چھو سکتے ہیں.
He is Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. He is Jehovah Rapha, the Lord that heals all thy diseases. You believe that? He is Jehovah Manasseh, a buckler, a shield, or peace. He's still.
وہ یہوہ یری ہے, خداوند جو قربانی مہیا کرتا ہے. وہ یہوہ رافا ہے, خداوند تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ یہوہ منسے ہے, ایک ڈھال, ایک سپر جو ہماری سلامتی ہے, وہ آج بھی ہے.
Well, how many believes that all those redemptive names of Jehovah was applied to Jesus? Sure, he had to be they're inseparable, so he had to be all of them.
ٹھیک ہے, کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہوہ کے وہ تمام مخلصی والے نام یسوع میں پورے ہوتے ہیں؟ یقیناً اس میں ہونے تھے. اگر وہ کیوں, وہ جدا جدا نہیں ہیں, ان میں سے سب کو اس میں ہونا ہے.
If he's still Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha. If he's Jehovah Jireh, he's Jehovah Jireh is the Lord's provided sacrifice for salvation. Then he's Jehovah Rapha that heals all of our diseases. Amen. Healing can only come by God.
और अगर वो अब भी यहोवा यरी है तो वो यहोवा राफा भी है. अगर वो यहोवा यरी है वो यहोवा यरी है. खुदावंद जो नजात के लिए कुर्बानी मुहैया करता है तो फिर वो यहोवा राफा भी है जो हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है. आमीन. क्योंकि शिफा सिर्फ खुदा के वसीले ही आती है.
All right, while the people line up, I haven't got time to see who they are and what they are. But now, all out there that knows that I don't know you, raise up your hand. Say, I have a need of God, but you don't know me, Brother Branham, but I have a need of God. I'm just going to raise my hand.
ठीक है, जबकि लोग कतार लगाते हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि देखूं कि वो कौन है और क्या है. लेकिन अब देखें, वो तमाम जो बाहर हैं, वो जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता. बस अपना हाथ उठाएं और कहें, मुझे खुदा की जरूरत है. भाई ब्रहनम, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मुझे खुदा की जरूरत है, इसलिए मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ.
Now if you just settle for a few minutes, watch, be careful, be quiet. Now I don't mean when I say be quiet, if the Lord does anything, you want to praise the Lord, that's worship.
अब अगर आप सिर्फ चंद मिनट के लिए ये काम कर लेंगे तो देखें, मोहतात हो जाएं और खामोश हो जाएं. अब मेरा ऐसा मतलब नहीं है जब मैं ये कहता हूँ कि खामोश हो जाएं, क्योंकि अगर खुदावंद कोई काम करता है तो आप उसकी तारीफ करना चाहेंगे और यही इबादत है.
But what I mean, just run around, get up, you know, that's irreverent. See, the Holy Spirit's very timid, very timid. See, just anything like that just leaves me, and I just have to battle in again. See, but if you listen.
लेकिन मेरा मतलब है जैसे कि इर्द गिर्द दौड़ना और खड़े हो जाना, आप जानते हैं ये बेहुर्मती है, समझे? और रूल कुछ बहुत ज्यादा मोहतात होता है, समझे? बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे कोई चीज छोड़ देती है और देखें, मुझे एक बार फिर जंग करनी पड़ती है. लेकिन आप सुने,
Remember his first promise, get the people to believe you and then be sincere. Nothing will stand before the prayer. You remember that?
Amen.
I haven't seen it fail yet and it won't fail. It's God.
आपको उसका पहला वादा याद है, लोग तेरा यकीन करें और फिर मुखलिस हों तो फिर दुआ के आगे कुछ भी नहीं ठहर पाएगा. क्या आपको ये बात याद है? ये सच है, जैसा कि मैंने अभी तक इसे नाकाम होते नहीं देखा और ना ये नाकाम होगा, क्योंकि ये खुदा है.
Now, we'll hurry with the prayer line so we get as many through as we can on count of the people. But you that's got prayer cards and not called tonight, hold your card, we're going to get you. All right?
अब हम दुआया कतार के साथ जल्दी करेंगे ताकि लोगों के हिसाब से हम इसमें से ज्यादा लोग लें जितने के हम ले सकते हैं. लेकिन आप लोग जिनके पास दुआया कार्ड हैं और अगर आज रात उन्हें बुलाया नहीं जाता तो अपना कार्ड थाम कर रखें, हम आपको भी लेंगे. ठीक है?
Now you out there without prayer cards, remember, are you out there whether you have prayer cards or not, just believe that he is like Hebrews the 4th chapter here. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
अब आप जो बगैर दुआया कार्ड के हैं, याद रखें, या आप जो बाहर हैं, चाहे आपके पास दुआया कार्ड है या नहीं, सिर्फ ईमान रखें कि वो अब्रानियों 4 के मुताबिक यहाँ मौजूद है. वो ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों में छू सकते हैं.
See if he remains. See if Jehovah has represented himself among his people like he did at the days of Sodom. All right.
देखें, वो बरकरार रहता है. तवज्जो दें, यहोवा ने खुद को अपने लोगों के दरमियान पेश किया है जैसे उसने सदूम के दिनों में किया था. ठीक है?
All right, sir. Now let's pray and be real reverent. I remember, a word from God is more than anybody could say.
ठीक है जनाब, अब आए दुआ करें. अब देखें, हकीकी मुखलस हो जाएं. अब याद रखें, एक लफ्ज जो खुदा की तरफ से है उससे बढ़कर है जो कोई इंसान कह सकता है.
Now, this man here, I don't know him, and I guess you're a stranger to me, are you, sir? You're a stranger. We know one thing, that we've both got to stand in the presence of God someday as man, we've got to meet there. This is our first time meeting.
अब देखें, ये आदमी यहाँ मौजूद है. मैं इसे नहीं जानता और मेरा ख्याल है कि वो आप मेरे लिए अजनबी हैं. जनाब, क्या आप हैं? आप एक अजनबी हैं. हम एक बात जानते हैं کہ ہم دونوں کو کسی روز خدا کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. انسان ہوتے ہوئے ہم دونوں کو وہاں ملنا ہوگا. یہ ہماری پہلی ملاقات ہے.
Now, if you come here, if you are sick, I don't know, it might be something else. See, but if I laid hands on you, say, praise the Lord, go get well. That's all right, you can believe that.
اب اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ بیمار ہیں. میں نہیں جانتا. دیکھیں, یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں اور کہتا ہوں خداوند کی تعریف ہو, جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے, تو یہ ٹھیک ہے. آپ اس بات پر ایمان رکھیں.
But what if he tells you what's wrong with you? Now, see, that's different. Then you know that identifies his characteristic.
لیکن کیا ہو اگر وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں یہ فرق ہے, تو پھر آپ جانتے ہیں یہ اس کی خصوصیت کی شناخت ہے.
See, that wouldn't be my characteristic. I'm a man. I wouldn't know nothing about him. I just told him, I don't know you. He don't know me. But what would that do? That would identify the characteristic of Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
غور کریں, یہ میری خصوصیت نہیں ہے. میں ایک انسان ہوں. میں تو اس آدمی کے متعلق کچھ نہیں جانتا. جیسا کہ میں نے بتایا ہے, میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ وہ مجھے جانتا ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا, یہی چیز یسوع مسیح کے کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہونے کی شناخت کرے گی.
Knowing that it couldn't be me. Couldn't be me because I don't know the man. I raise my hand, here's the word. See, I don't know him, he don't know me. But the characteristic of Jesus Christ.
اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ میں نہیں ہو سکتا, میں نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. سمجھے, وہ مجھے نہیں جانتا, لیکن یہ یسوع مسیح کی خصوصیت ہے.
If Jesus would stand here and he's sick, if he'd say, Lord Jesus, heal me, what would Jesus say to him? I've already done it. Is that right?
اگر یسوع یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ آدمی بیمار ہے اور اگر یہ کہے گا خداوند یسوع مجھے شفا دے, تو یسوع اس سے کیا کہے گا؟ میں نے تو یہ کام پہلے ہی کر دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟
He was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. All the redemption that we ever can have was settled at Calvary. From there on is faith to believe the finished work. Is that right?
Yeah.
All right.
حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. تمام مخلصی جو ہم لے سکتے ہیں کلوری پر طے ہے, اور وہاں سے تکمیل شدہ کام پر یقین کریں. یہی ایمان ہے. کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے.
Now, if Jesus is alive, now I've talked of his word, there you are back to that simplicity and faith believing his word.
اب دیکھیں, اب یسوع زندہ ہے اور میں نے اس کے کلام کے متعلق بتایا ہے. واپس سادگی اور کلام کی طرف آئیں اور اس کے کلام کا یقین کریں. یہاں ہیں آپ.
When he met me that night, he said, you'll come to pass that you'll even know the secrets of their heart. They won't believe that first sign of the hand, they will have to believe this one. If they don't do that, then blood curses the earth, just like it did in Moses' time.
جب وہ اس رات مجھ سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا, تیرے ساتھ ایسا ہوگا حتیٰ کہ تو ان کے دل کے خیالات جان لے گا. اگر وہ ہاتھ کے پہلے نشان کا یقین نہیں کریں گے تو انہیں اس نشان کا یقین کرنا پڑے گا. سمجھے, اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر خون زمین پر لعنت کرتا ہے, بالکل جیسے موسیٰ کے دنوں میں ہوا تھا. اس نے کہا تھا اگر وہ ان دو نشانوں کا یقین نہ کریں گے تو پھر خون زمین پر انڈیل دینا. دیکھیں, پانی کو زمین پر انڈیل دینا تو وہ خون بن جائے گا.
Now, just find out when you see what your trouble is. That would satisfy, make you believe. What, you know, it had to be the characteristic of the person I'm talking about, Jesus Christ.
اب صرف معلوم کریں, اگر میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے تو یہ چیز مطمئن کرے گی اور آپ کو ایمان رکھنے کے قابل بنائے گی. کیا یہ نہیں بنائے گی؟ اور آپ جانتے ہیں یہ اس شخص یسوع مسیح کی خصوصیت ہوگی جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں.
A man, as I look at him, moves back, he's shattered. There isn't a thing that medicine would ever help the man. He's in a dying condition. That's right.
یہ آدمی جیسے ہی میں نے اس پر نگاہ ڈالی واپس مڑا. وہ سایہ ہے اور دعا جیسی چیز इस आदमी की मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये करीबुल मर्ग है, ये सच है।
He's had an operation. And the operation was a prostate operation. And it's cancer, and the cancer scattered all through you. If that's right, raise up your hand.
Hallelujah.
Only God can heal.
इसका ऑपरेशन हुआ था और ये ऑपरेशन एक गदूद का ऑपरेशन था और ये कैंसर है और कैंसर आपके पूरे वजूद में फैल चुका है। अगर ये सच है तो अपना हाथ उठाएं। सिर्फ खुदा ही इस आदमी को शिफा दे सकता है।
I want to say something to you, sir. That devil might have hid from the doctor's knife, but he can't hide from God. You believe it? And I pray that in the name of Jesus Christ, may the thing leave you, may the man live.
लेकिन देखें जनाब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि शैतान ने इसे डॉक्टर के तेज धार आले से छुपाए रखा, लेकिन शैतान इसे खुदा से नहीं छुपा सकता। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं? क्या आप इस बात का यकीन करते हैं? फिर मैं यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, साया इस शख्स को छोड़ दे और ये शख्स जिंदा रहे।
All right.
अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ कमजोरी है, ठीक है?
You and I are strangers to each other. A man and a woman meets. Now, as a man, I don't know you. And perhaps as a woman, you don't know me. No more than you just see my name or picture or something like that. But we don't know one another. That's our characters. We don't know one another's character.
अब एक मर्द और एक औरत होते हुए, मैं और आप एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और अब एक मर्द होने के नाते मैं आपको नहीं जानता और शायद एक औरत होने की हैसियत से आप भी मुझे नहीं जानती और ना ही इससे पहले आपने मेरा नाम सुना है, ना तस्वीर या कोई और चीज देखी है, लेकिन हम एक दूसरे के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते हैं।
But the characteristic of Christ, He's the Word, and the Word is promised for this day. You heard me speak of it.
लेकिन ये मसीह की खसूसियत है क्योंकि वो कलाम है और कलाम ने इस जमाने के लिए वादा किया है। आपने मुझे उसके मुतल्लिक बयान करते सुना है।
Then his characteristics would identify him here. Not me identify him. I don't know him. You understand? Our congregation understand that? I'm the man. I'm just your brother.
तो फिर उसकी खसूसियत उसे यहाँ शनाख्त करेगी। ना मैं उसे शिनाख्त करा सकता हूँ, मैं आपको नहीं जानता। आप समझ गई हैं? क्या हमारी जमात इसे समझ गई है? समझे? मैं एक इंसान हूँ, मैं सिर्फ आपका भाई हूँ।
Like the woman at the well, say something is wrong with you, or what you want, or what you're here for. Let God be the judge of that.
जैसे कुएं पर औरत थी, बताया कुछ गलत है, आपके साथ भी कुछ गलत है। या आप क्या चाहती हैं? आप किसके लिए यहाँ मौजूद हैं? इस बात का खुदा ही जज होगा।
You are suffering from anemia condition. That is right, isn't it? I constantly hit that somebody thinking I guessed it. I don't guess that. No. Every once in a while I feel that somebody.
सुने, आप अनीमिया में मुब्तला होने की वजह से मुसीबत उठा रही हैं। ये सच है, क्या ये नहीं है? मैंने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है, लिहाजा कोई सोच रहा है कि मैंने इस बात का अंदाजा लगाया है। मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया है, हरगिज नहीं। पल भर में ही मैंने महसूस किया कि कोई है।
You can't hide your thoughts now. Now it's about, I know two real bad skeptics sitting here. So now remember, I can call your name too. God can. So you quit thinking.
अब आप अपने ख्यालात को छुपा नहीं सकते। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ तकरीबन दो लोग नहायत ही शकी मजाज बैठे हुए हैं, समझे? लिहाजा याद रखें, मैं आपका नाम भी पुकार सकता हूँ, खुदा ऐसा कर सकता है, लिहाजा आप इस सोच को तर्क कर दें।
Let me show you. Look here, lady. Look at me. I don't know what he told you, but I know what he is, and that's his characteristic identified. Yes, it's anemia condition of blood.
मैं आपको दिखाता हूँ। खातून, यहाँ देखें, मेरी तरफ मतवज्जो हों। मैं नहीं जानता कि उसने आपको क्या बताया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो क्या है। यही उसकी खसूसियत की शनाख्त है। जी हाँ, ये खून और पानी अनीमिया की हालत में है.
Now, here's something. See if they think this is guessing. Got a child you're praying for in the chair. That's right. It's got in its throat tonsils, adenoids. It's up for an operation, isn't it right? Take that handkerchief and put on it and believe. Don't doubt. It won't need it.
अब यहाँ कुछ है. अगर वो लोग सोचते हैं कि ये अंदाजा लगाया गया है, तो फिर यहाँ किसी एक के लिए आप दुआ कर रही हैं. ये सच है और ये बीमारी उसके गले में है. गदूद, गले और नाक के दरमियान गदूद है और अब ये चीज एक ऑपरेशन के लिए तैयार है. क्या ये सच नहीं है? इस रुमाल को लें और उसके ऊपर रखें और सिर्फ ईमान रखें, शक ना करें. उसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी. अब अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें.
How do you do? The thing is, for this woman here, that you are scared about something. You're afraid that a birthmark has turned to cancer.
Woo!
Now, go believing. It won't be that way. Just go believing with all your heart.
आप कैसी हैं? ये बात इस औरत के लिए है. क्योंकि आप किसी चीज के मुतल्लिक खौफजदा हैं. आप खौफजदा हैं कि पदेशी निशान कैंसर की जानिब मुड़ गया है. अब जाएं, ईमान रखें. वो उस जानिब नहीं जाएगा. बस जाएं और अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें.
Characteristics, not of me, of him. You believe now? That should make everybody believe.
यही खसूसियात हैं जो मेरी नहीं हैं, बल्कि उसकी हैं. क्या अब आप ईमान रखते हैं? बस सबको ईमान रखना चाहिए.
Now, I don't know you. I'm a stranger to you. God knows you. You believe that you know that I don't know you. You know you don't know me. So do you believe that this spirit that's speaking cannot be my spirit? Because me as a man, I don't know you.
अब देखें, मैं आपको नहीं जानता. मैं आपके लिए अजनबी हूँ. खुदा आपको जानता है. क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? आप जानती हैं कि मैं आपको नहीं जानता और आप इस बात को भी जानती हैं कि आप मुझे नहीं जानती. बस क्या आप ईमान रखती हैं कि ये रूह जो बोल रही है, ये मेरी रूह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक इंसान होते हुए आपको नहीं जानता.
But the characteristic of the promised word is the word that's sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents of the heart.
लेकिन ये मौदा कलाम की खसूसियात हैं. वो कलाम जो हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है.
You are very sick. You had a woman's trouble, which was a womb, and that womb had cancer. And you went and taken some sort of a treatment, his radium treatment, and the only thing it done is scattered all through you. And you'll die if God don't heal you. That's true.
आप बहुत बीमार हैं. आपको जनाना तकलीफ थी जो कि रहम में है और ये रहम का कैंसर है और आप इस सिलसिले में गई और इसके लिए एक तरीका इलाज लिया. ये रिडीम तरीका इलाज था और इससे सिर्फ एक ही काम हुआ कि ये आपके पूरे वजूद में फैल गया. और अगर खुदा आपको शिफा नहीं देता तो आप मर जाएंगी. ये सच है.
You believe now he will heal you? May the God of heaven rebuke that devil that's hid from the doctor. He might have hide from radium, but not from the Holy Ghost. Don't believe it, my sister. Don't doubt it all. But believe it.
Oh, God.
क्या अब आप ईमान रखती हैं कि वो आपको शिफा देगा? आसमान का खुदा इस शैतान को डांटता है जो कि डॉक्टर से छुपा बैठा है. हो सकता है वो रडीम की सूरत में छुपा बैठा है, लेकिन रुल कुछ से छुप नहीं सकता है. बहन जी, अब आप जाएं और उस पर ईमान रखें. किसी भी हाल में शक ना करें, बल्कि ईमान रखें.
You believe that God can heal that asthmatic condition, make you well? Yes. You believe it? Then go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord. I believe my asthma is done."
क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको दमे की हालत से शिफा दे सकता है और आपको ठीक कर सकता है? आप इस पर ईमान रखते हैं तो फिर खुशी मनाते हुए अपनी राह पर जाएं और कहें, खुदावंद, तेरा शुक्र हो, मेरा ईमान है, मेरा दमा जा चुका है.
You've been nervous for a long time. In that is caused a peptic ulcer to come to your stomach, which makes you
Your stomach trouble. You want your teacher supper? Will you do what I tell you to do? Go eat in the name of the Lord Jesus.
आप कैसे हैं? आप परेशान हैं? आप एक लंबे अरसे से परेशान हैं। इसकी वजह हाजमे का अल्सर आपके पेट में है और उसने आपके पेट में तकलीफ ज्यादा बढ़ा दी है और आप चाहते हैं, आप अपना रात का खाना खाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये खाने को कहता हूँ। आप जाएं और खुदावन यीशु के नाम में खाना खाएं।
Do you believe with all your heart? You're a mighty fine young lady looks to be. Do you believe me to be his servant? Do you believe his characteristic can be here to the word itself, the promise of this day, the works that I do, shall you also?
क्या आप पूरे दिल के साथ ईमान रखती हैं? देखने में तो आप नहायत नौजवान औरत लगती हैं। क्या आप मुझ पर उसका खादम होने का यकीन करती हैं? क्या आप ईमान रखती हैं कि खुद उस कलाम की खसूसियत यहाँ हो सकती है और इस जमाने के लिए वादा है, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे।
I can't heal, he's already did that. But his characteristic displays, he can tell what's wrong with you. You got a lady's trouble, female trouble. You believe that God heals it now? Go on your road in my body and heal with all your heart.
मैं शिफा नहीं दे सकता। उसने ये काम पहले ही कर दिया है, लेकिन उसकी खसूसियत ही उसको जाहिर करती है। वही बता सकता है आपके साथ क्या मसला है। आपको औरतों वाली बीमारी है, यानी जनाना बीमारी है। क्या आप ये ईमान रखती हैं? खुदा अभी इससे आपको शिफा दे सकता है। तो फिर अपनी राह पर जाएं। ये मजीद आपको नुकसान नहीं दे सकती। अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें।
Do you believe me to be his servant?
Yes, sir.
If God will tell me what's your trouble, will you believe it's a characteristic of Jesus Christ? It's in your back. It isn't no more. Go believe it.
क्या आप मुझ पर उसका खादम होने का यकीन करती हैं? अगर खुदा मुझको बता दे कि आपके साथ क्या मसला है, तो आप यकीन करेंगी? ये यीशु मसीह की खसूसियत है। ये आपकी कमर में है, लेकिन अब ये खत्म हो गई है। जाएं और अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें, एतकाद रखें।
You also have stomach trouble. Believe with all your heart, go eat your supper. Forget about it. Jesus Christ makes you well.
खातून, आएं। आपको भी पेट की तकलीफ है। अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें। जाएं और अपना रात का खाना खाएं। इस तकलीफ को भूल जाएं। यीशु मसीह आपको शिफा देता है।
Your trouble is your blood. Your diabetes. You believe that God will make you well and heal you then? Go on your road and say, thank you, Lord Jesus. Make you well. Don't believe it on your back.
आएं, आपकी तकलीफ आपका खून है। आपको शुगर है। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको अच्छा कर देगा और इससे आपको शिफा देगा? अपनी राह पर जाएं और कहें, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रिया। वही आपको अच्छा करता है। जाएं और अपने दिल के साथ ईमान रखें।
Come. Your back. You believe that God will heal the back, make you well? Go on your road, rejoice and say, thank you, Lord Jesus.
आएं, आपकी कमर में तकलीफ है। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा कमर को ठीक कर देगा और आपको अच्छा कर देगा? अपनी राह पर जाएं और शादमान हों और कहें, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रिया।
You also had something wrong with your back. Just keep on walking. Say thank you, Lord, and heal.
आपकी कमर के साथ भी कुछ गड़बड़ है। बस आगे बढ़ें और कहें, खुदावंत, तेरा शुक्रिया, मैं शिफा पा चुका हूँ। अपने पूरे दिल के साथ इस पर ईमान रखें।
You also had back trouble. What do you know about that? Believe with all your heart and go on your road and be made well. Believe Jesus Christ makes you well. If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
All right.
आपको भी कमर की तकलीफ है। आप इसके मुतल्लिक क्या जानते हैं? अब अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें, अपनी राह पर जाएं और शिफा पाएं। ईमान रखें, यीशु मसीह आपको शिफा देता है। अगर तू ईमान रखे तो सब कुछ मुमकिन है। ठीक है?
What if I didn't say nothing to you? Just pass by and laid hands on her. You believe she'd get well? They see what's wrong. You believe she would?
अच्छा, तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ गुजरा और अपने हाथ उस पर रखे। क्या आप ईमान रखती हैं कि वो ठीक हो जाएगी? लोग देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। क्या आप एतकाद रखती हैं कि वो ठीक हो जाएगी?
Come here. I resist this devil in the name of Jesus Christ. May the power of God heal the child. Go down. Go down.
यहाँ आए, यीशु मसीह के नाम में मैंने इस शैतान को निकाल दिया है, ताकि खुदा की कुदरत से ये बच्ची शिफा पाए। आमीन। शक न करें, किसी भी हाल में शक न करें, और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें।
If God doesn't heal you, you'll be on a crutch someday with arthritis. But you believe that God heals your arthritis? Then go say, "Thank you, Lord. I believe it, and you make me well."
अगर खुदा आपको शिफा नहीं देता, तो फिर आप किसी दिन जोड़ों के दर्द के साथ एक बैसाखी पर होंगे। लेकिन आप ईमान रखें, खुदा आपको जोड़ों के दर्द से शिफा देता है। तो फिर जाएं और कहें, खुदावन तेरा शुक्रिया, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ और तू मुझे अच्छा करता है।
It's really your age. You're real nervous. Get real nervous late in the evening when you're working and everything. You're real nervous. You bleed now, it won't bother you no more. Go on your road, say thank you, Lord Jesus.
ठीक है, अब आएं, ये सच है, ये आपका जमाना है। आप वाकई परेशान हैं। रात को देर की वजह से आप वाकई परेशान हैं। जब आप काम और बाकी सब कुछ करते हैं, आप वाकई परेशान हैं। क्या अब आप ईमान रखते हैं? तो फिर ये चीज आपको मजीद परेशान नहीं करेगी। अपनी राह पर जाएं और कहें, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रिया।
Come, sir. Do you believe that God heals heart trouble? Yes. Will make your heart well? Just keep on moving. Say, thank you, Lord. I believe with all my heart.
जनाब, आएं। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा दिल की तकलीफ से शिफा देता है। आपका दिल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते रहें और कहें, खुदावंद तेरा शुक्रिया, मैं अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखता हूँ।
God heals TB and makes well too. You believe that, sir, with all your heart? Amen. All right, go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord."
खुदा टीबी से भी शिफा देता है और अच्छा करता है। जनाब, क्या आप अपने पूरे दिल के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं? ठीक है, अपनी राह पर जाएं और शादमानी करें और कहें, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रिया।
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
आपके बारे में जो वहाँ हैं, क्या ख्याल है? क्या आप ईमान लाते हैं? सामीन के कैसे ख्यालात हैं? आप सामीन में से भी अब कुछ ईमान लाए हैं?
This man sitting right here with bronchitis, you believe that God will heal the bronchial trouble? All right, you can have what you've asked for. Amen.
ये आदमी यहाँ फेफड़ों की नाली की तकलीफ के साथ बैठा हुआ है। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा फेफड़ों की नाली की तकलीफ से शिफा दे सकता है। ठीक है, तो फिर जो कुछ आपने मांगा है, आप उसे पा सकते हैं। आमीन।
High blood pressure sitting right behind you. Do you believe that God will heal your high blood? It left you, sir. I don't know him. Never seen him in my life.
इस शख्स के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा आपको आपके हाई ब्लड प्रेशर से शिफा देगा? जनाब, ये आपको छोड़ गया है। मैं इस शख्स को नहीं जानता और अपनी जिंदगी में से कभी नहीं देखा।
Say, sir, do you believe that them spasms in your muscles, nervous muscles, spasms, you believe that God will make it well? You do? Raise up your hand if you believe. All right.
बोले जनाब, क्या आप यकीन करते हैं कि ये ऐंठन की तकलीफ आपके पट्ठों में है, जो असाबी लिहाज से पट्ठों का सुकड़ना है? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको इस तकलीफ से शिफा देगा? क्या आप यकीन करते हैं? अगर आप यकीन करते हैं, तो फिर अपना हाथ उठाएं। ठीक है।
Your wife sitting there, she's bothered with sinus trouble. You believe it leaves you too, sister? The lady sitting right behind us, there has neuritis. You believe that God will heal your neuritis, lady?
आपकी बीवी यहाँ बैठी हुई है और वो हड्डियों की बीमारी से परेशान है। बहन जी, अगर आप भी ईमान रखती हैं, तो ये बीमारी आपको छोड़ चुकी है। वो औरत जो ठीक हमारे पीछे बैठी हुई है, उसे वर्म है। खातून, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको आपके वर्म से शिफा दे सकता है?
Here's a lady with a little red coat on here. She's sitting there. She has sinus trouble too. You believe that God will heal your sinus trouble? Raise up your hand if you believe it.
यहाँ एक खातून कोट पहने हुए है। वो यहाँ लाल कोट पहने हुए है। वो वहाँ बैठी हुई है। उसको भी हड्डियों की बीमारी है। क्या आप ईमान रखती हैं? खुदा आपको हड्डियों की बीमारी से शिफा देगा? अगर आप इस बात पर ईमान रखती हैं, तो अपना हाथ उठाएं।
Anybody in here that believes that the characteristics of Jesus Christ is among us tonight, raise up your hand and say, I believe it.
आज रात इस जगह पर जो कोई भी ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह की खसूसियात हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो अपना हाथ उठाएं और कहें, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ।
All that's in here will accept him as your healer. Stand up on your feet and say, I believe it. Raise up, stand up, out of your chairs, whatever it is. Jesus Christ is saying yesterday, today and forever. I give it to you in the name of the Lord God.
तमाम जो इस जगह पर मौजूद हैं, क्या उसे अपना शाफी कबूल करेंगे? अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और कहें, मैं इस पर ईमान रखता हूं। खड़े हो जाएं अपनी कुर्सियों से या जहां कहीं भी हैं, खड़े हो जाएं। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और मैं खुदावंद के नाम से आपको उसके हवाले करता हूं।